प्रातः क्लास चल रहा था, 10/11/1966 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। हमारा बेहद का बाबा कौन? बेहद का बाबा कौन? शिव बाप। बाप नहीं कहा, आत्माओं का बाप अलग, और वो आत्माओं का बाप ही है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। जो आत्मा बनते हैं पुरुषार्थ करके, उनका बाप है। जो आत्मा नहीं बनते, कुछ न कुछ देवान में मस्त रहते हैं, देवान टूटता ही नहीं, उनका बाप नहीं। तो किसने कहा हमारा बाबा, और किसको कहा? बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है, जो पुरुषार्थ करके ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर होती हैं, देवान को भूल जाती हैं। उन आत्माओं का बाप बाबा नहीं, वो आत्माओं का बाप जब इस दुनिया में आकर के कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तब उनको बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर। और भी ढेर सारे संबंध बनते हैं, उनमें ग्रैंडफादर है मुख्य, बाप का बाप। कौन से बाप का बाप? मनुष्य आत्माओं के बाप का भी बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो बाप शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि में मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं, तो हमारा संबंध बनता है बाबा और बाबा के पुत्र। बाप का वर्षा मिले, ज्ञान मिले, लेकिन बाबा का वर्षा जरूर मिलता है, ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो हम आत्माओं का बाप है शिव, बाप तो है, बाप से वर्षा मिलता है, कुछ न कुछ तो वर्षा मिलता ही है। अब ये तो बेहद का बड़े से बड़ा बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उस आत्माओं के बाप से क्या मिलता है? उसके पास क्या प्रॉपर्टी है? उसके पास वो प्रॉपर्टी है जो इस दुनिया के कोई भी आत्मा के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी आत्मा रूपी बच्चे के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ तक के जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उन ग्रेट फादर्स का भी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि में ग्रेट फादर्स का भी बाप, उसके पास भी वो अखूट ज्ञान धन की संपत्ति नहीं है। किसके पास है? शिव बाप के पास, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। क्योंकि उसका शरीर का जन्म होता ही नहीं, जिसके शरीर का ही जन्म नहीं होता वो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता है। लेकिन वो बाप अपना वर्षा जो अखूट धन संपत्ति का वर्षा है, ऐसी अखूट धन संपत्ति जिसमें से कोई सारा ही निकाल ले तो भी संपूर्ण बचता है, ऐसी अखूट धन संपत्ति का बाप, ज्ञान धन का बाप अपना वर्षा किसको देता है? दुनिया में परंपरा चली आती है, वही परंपरा चलती है जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत बाप संगम युग में आकर के परंपरा चलाते हैं। जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व, इस दुनिया में जितने भी बाप हैं वो सभी बाप अपने बड़े बच्चे को वर्षा देते हैं। राज्य का वर्षा हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी का वर्षा हो, हिस्ट्री देख लो, जो भी राजाएं हुए उन्होंने कौन से बच्चे को वर्षा दिया? राजा ही का बड़े बच्चे को दिया। ये परंपरा कहाँ से चली है? संगम युग में जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, शिव बाप, वो अपने बड़े बच्चे को अखूट ज्ञान धन संपत्ति का वर्षा देता है। बाप है ना, दूसरे बच्चों को दे या न दे, लेकिन बड़े बच्चे को जरूर देता है। और वो बड़ा बच्चा किस आधार पर बड़ा है? अरे ज्ञान उसके पास है। बाप तो कहते हैं, मैं पतितम कामी कांटे में आता हूँ, तो उसमें ज्ञान है या अज्ञान है? है? सतयुग के आदि में बड़े स्वर्णलिंग के रूप में, त्रेता में रजत लिंग चांदी के लिंग के रूप में, द्वापर में ताम्र लिंग के रूप में, और कलयुग में लौह लिंग या पत्थर लिंग के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन जाता है। पत्थर बुद्धि माने जिसकी बुद्धि में ज्ञान का कोई पॉइंट टिकता ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी पॉइंट है, इसलिए पत्थर के लिंग के रूप में कलयुग में पूजा जाता है। तो बताओ उस बच्चे को बड़ा बच्चा कैसे स्वीकार किया गया, वो भी सुप्रीम सोल के द्वारा है? सच्चाई, सत्य, सत्य क्या है? सत्य ज्ञान है, लेकिन कलयुग के अंत में उस समय तो सत्य है ही नहीं। सत्य है मन सत्य, सत्य मन सार, जैसे देवताएं आत्मिक स्थिति रूपी सार में टिकते हैं, तो उस बच्चे में कलयुग के अंत में वो सत्य है, जिस सत्य को धारण करने से धरणी माताएं कन्याएं माताएं सती बनती हैं। क्या बनती हैं? सती बनती हैं। अब पुरुषों को तो सबको कह दिया भगवान ने, दुर्योधन दुशासन, तो कहां सती और कहां वो पुरुष। आनोन पुरुषों में भी सब पुरुषों का बाप, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप, तो क्या उसे सत्ता कहा जाता है? कन्याएं माताएं नंबर बार सती बनती हैं, सत्य को धारण करने वाली सती, और पुरुष तो सत्ता बनते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो अंतिम जन्म में प्रैक्टिकल जीवन में जिसे सत्य कहा जाता है, सार कहा जाता है, प्योरिटी कहा जाता है, जिस प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं, अच्छे से अच्छे काम भी उसी प्योरिटी की पावर से होते हैं, और बुरे से बुरे काम भी उसी प्योरिटी के कारण होते हैं, नहीं तो जालंधर जैसा राक्षस जिसका नाम ही पड़ा जलंधर, क्या धर के बैठ गया है? ज्ञान जल को धर के बैठ गया, वो जलंधर वो सत्य की पावर से, जब तक वो सत्य की पावर उसके पास रही, सती वृंदा उसके साथ रही, तब तक भगवान भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, टक्कर लेता रहा। भगवान से भी हारा नहीं, वो ही पावर सती वृंदा के पास जो थी, सत्य की पावर, और वो किसकी मुट्ठी में थी? जलंधर की मुट्ठी में। तो जलंधर जीतता चला गया, हारा नहीं। तो देखो, बुरे से बुरे काम भी कौन सी ताकत से होते हैं? वो ही सत्य की ताकत से, वो ही सत्य की ताकत पुरुषों में होती है। परंतु पुरुष मेल हैं, फीमेल सत्य को धारण कर लेती है। पुरुष के सत्य की पावर कौन धारण करती है? हैं? कन्याएं माताएं रूपी धरणी धारण करती हैं, और पुरुष क्षीण हो जाता है। कैसे? सत्य से। उन सभी पुरुषों का बाप कौन है? मनुष्य शक्ति का बीज, वो भी वैसा ही। कैसा है? सारा ज्ञान तो धारण कर लेता है, शिव बाप का दिया हुआ ज्ञान, अखूट ज्ञान धारण करता है। बुद्ध रूपी पॉकेट में, परंतु स्टोर करके रख पाता है, है? क्यों? स्टोर करके क्यों नहीं रख पाता है? क्योंकि पुरुष सब सब दुर्योधन दुशासन है। सत्य की पावर के साथ दुष्ट युद्ध करते हैं। एक होता है अखाड़े में, जो पहलवानी सिखाने वाला उस्ताद, और उसका चेला। अखाड़े में युद्ध करते हैं ना? नहीं करते? करते हैं। प्यार से करते हैं या दुश्मनी से करते हैं? हैं? प्यार से करते हैं। दुख देने की तो बात नहीं है, हैं? नहीं है। तो प्यार से करना, प्यार में कुछ भी सहन किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती से जो सहन करना होता है वो मजबूरी हो जाती है। और वो ही कन्या माताओं के साथ होता है कलयुग के अंत में। सब पुरुष दुर्योधन दुष्ट युद्ध करते हैं। काम विकार का उद्वेग पैदा होता है तो किसको क्या दुख होता है, कितना दुख होता है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे बैल जानवर बन पड़ता है, बन बैल होता ही है जानवर, ऐसे बैल की तरह, जानवर की तरह, जानवर से भी बाबा कहते हैं बदतर क्या हो जाते हैं? जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। और उन सब का बाप है कौन? राम बाप कहा जाता है। वो ही राम बाप जब शिव बाप के संग में आता है तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता? नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल में ही सदैव रहता है, बाहर कभी आता ही नहीं, क्षीर सागर का रहने वाला। जो इतना सत्व प्रधान होता है शिव बाप के संग से, वो ही बाप मनुष्य सृष्टि का बाप नर से नारायण बनने वाला, 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला, सतयुग के फर्स्ट सीन, ड्रामा का फर्स्ट सीन है ना, आदि से ही मनुष्य, जो मनुष्य सुधर करके देवता बनते हैं, देवता से द्वापर द्वैतवादी युग में आकर के देवता से मनुष्य बन जाते, और कलयुग में आकर के कलाहीन राक्षस बन जाते, उनके संग के रंग में आते आते बड़े से बड़ा राक्षस बन जाता। कोई कहे ये कैसे हो सकता? ये ऐसे हो सकता जैसे कोई बड़े से बड़े आदमी का पुत्र और छोटे छोटे आदमियों के पुत्र, दोनों प्रकार के पुत्र कुसंगति में आ जाएं तो जास्ती नीचे कौन गिरेगा? जो बड़े से बड़े आदमी का पुत्र है वो जास्ती नीचे गिरता है। ऐसे ही ऊंचे से ऊंचा भगवंत बाप शिव का बच्चा, वो भी बड़ा बच्चा, जो इतना मनुष्य शक्ति में ऊंचे से ऊंचे देवता बनता है, वो ही कलयुग के अंत में उतरती कला वालों के संग के रंग में आते आते सतयुग के आज से लेकर के कलयुग के अंत तक एकदम भ्रष्ट बुद्धि बन जाता है, पत्थर बुद्धि। कैसा बन जाता? शिवबाप आकर के ज्ञानामृत पिलाते हैं। क्या पिलाते? ज्ञान अमृत रस पिलाते हैं, सोम रस पिलाते। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा के मुख से निकला हुआ जो रस है ज्ञान का, जिसे मुरली कहा, जो मुरली के लिए बताया अभी, गीता ज्ञान तो कहेंगे लेकिन ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। 66 की वाणी में बोला जब बाबा जीवित थे, ज्ञानामृत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिसके मुख से निकला उस मुख ने भक्ति मार्ग में दिखाया कि कृष्ण ने कौन सी मुरली बजाई, कांटे की मुरली बजाई। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके मुख से मुरली निकली वो आत्मा भी कठ बुद्धि थी, मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं थी। इसलिए उसको कहा ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान अमृत तब कहा जाता है जब सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाते हैं। वो सुप्रीम टीचर गीता माता के एक एक रोम रोम को, एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य को गहराई से विस्तार से समझाता है, जिसको शास्त्रों की भाषा में कहा गया है सांख्य योग। क्या कहा? सांख्य योग। और सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि को माना गया है। जिन कपिल मुनि के द्वारा बसाई हुई नगरी का नाम कांपिल्य नगर पड़ा। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, मन व्याख्या। सह माने साथ, व्याख्या के साथ जो बात समझाई जाए उसको कहा जाता है सांख्य। तो मुरली जो ज्ञान है, वेद वाक्य है। कहते हैं वेद ब्रह्मा के मुख से निकले, निकले तो ब्रह्मा के मुख से, लेकिन उन वेदों की ऋचाओं को, उनके शब्दों को आज कोई जानता है, सुनता है? न जानता है, न सुनता है, न समझता है, न समझाता है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? है? ब्राह्मणों की संघ में भी दुनिया में इसकी शूटिंग होती है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी सुनाते हैं, जिसे मुरली कहा जाता है, वो मुरली सुनते तो हैं, सबसे जास्ती किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। वो सुनता भी सबसे जास्ती है और सुनाता भी सबसे जास्ती है। इसलिए उसकी यादगार महाराष्ट्र में किस रूप में पूजी जाती है? गणेश के रूप में पूजी जाती है। कितने बड़े कान होते हैं सूप जैसे, यादगार है, सुनने सुनाने की यादगार है। भगवान का बच्चा ब्रह्मा किसका बच्चा? भगवान का बच्चा। भगवान का बच्चा शास्त्रों में बता दिया शंकर भगवान का बच्चा। अब बताओ शंकर भगवान है या देवताओं में महा माने बड़ा देवता है? देवता में भगवान में तो अंतर होता है। बड़ा देवता है, भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, उसको पुरुषार्थ करने की दरकार है। पुरुषार्थ में चार सब्जेक्ट बड़े से बड़े, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है योग, याद। और उस बड़े से बड़े सब्जेक्ट में शंकर की आत्मा बड़े से बड़ा पुरुषार्थी है या संपन्न बन गया पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है। और भगवान होता तो उसको किसकी याद करने की जरूरत। अपने से जो ऊंचा होता है, पावरफुल होता है, बड़ा होता है, उसको याद किया जाता है। तो देखो भक्ति मार्ग में ये सब अगड़म बगड़म चलता है। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि मैं तो आता हूँ तो मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? देवता बनाता हूँ। भगवान ऊंचे से ऊंचा है तो देवता बनाता है। अच्छा, नियम तो यही है। डकैत क्या बनाएगा और चोर क्या बनाएगा और साहूकार क्या बनाएगा?
भगवान भगवान भगवती बनाएंगे ना,
भगवान आता है।
लेकिन भगवान भगवती जब बनाता है तो जो भगवान का संपन्न स्वरूप है वो संपन्न स्वरूप शंकर तो नहीं है। नहीं,
संपन्न रूप से
नारायण सोलह कला संपूर्ण देवता है। उसको भगवान नहीं कह सकते। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाता है, परंतु कहता है कि भगवान तो एक ही होता है। असलियत में भगवान दो चार या हजार दो दो हजार या 500 करोड़ नहीं हो सकते। परंतु वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहता है कि भगवान भगवती इसलिए बनाता है कि वो जो दुनिया रचता है वो सन्यासियों की दुनिया रचता है या प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं की दुनिया रचता है, इसलिए भगवान के साथ भगवती को भी रचता है। भगवान भगवती की दुनिया बनाता है और शंकर के साथ नहीं, शंकर के साथ जिस पार्वती का नाम लिया गया वो पार्वती किसको पार लगाने वाली पार्वती है? नारायण को। नारायण तो पहले होता ही नहीं, वो तो नर होता है।
दोनों को प्राथमिक स्टेज में टिक जाए तब तो
है,
कार में टिक जाते हैं ना।
कौन?
नारायण वाले, राम वाले।
अभी न नारायण की बात हो रही न राम की बात हो रही। राम के लिए तो बता दिया, राम वो त्रेता वाला नहीं, रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, वो राम। तो त्रेता वाला राम तो 14 कला संपूर्ण, वो तो घटती कला का है। अरे उसकी तो बात छोड़ो, जो सतयुग का पहला प्रिंस है, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, वो अपने जीवन में गिरती कला का पार्ट बजाता है या चढ़ती कला का पार्ट बजाता है? गिरती कला का पार्ट बजाता है। तो वो राम और वो कृष्ण की तो बात ही नहीं हो सकती। उस 16 कला संपूर्ण सतयुग के कृष्ण को जो जन्म देने वाला बाप है, वो जन्म देने वाला भगवान के साथ भगवती वाला है, नहीं तो कृष्ण का जन्म कैसे होगा? मेल से होगा क्या? प्रवृत्ति से होना है ना। तो वो ऊंचे से ऊंची प्रवृत्ति दिखाई गई है, वो शंकर की प्रवृत्ति नहीं है। क्या? शंकर तो विषपाई है। क्या है? विषपाई। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पराए पुरुष का शरीर की इंद्रियों से भोग करना, ये विष के समान है। ऐसा घातक विष पीने का आदि है। वो आत्मा और अंतिम जन्म में इतना बड़ा विषपाई बन जाता है कि जो संसार को कंट्रोल करने वाली भगवान से राजयोग सीख करके राजाई का नियंत्रण पाने वाली आत्माएं हैं, कितनी टोटल? 16,000। उन 16,000 गोप गोपियों को जो 63 जन्मों में या 84 जन्मों में कोई और की पत्नियां रही हैं, उसी की पत्नियां रही हैं क्या 84 जन्मों में? नहीं, कोई और की पत्नियां रही हैं, उन आत्माओं को पत्नी बना करके, गोपी बना करके, गुप्त संबंध जोड़ करके, संबंध काय से जोड़े जाते हैं? शरीर की इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। माता बच्चे का संबंध अलग प्रकार का, भाई बहन का संबंध अलग प्रकार का, गुरु चेले का संबंध अलग प्रकार का, पति पत्नी का संबंध अलग प्रकार का। तो सब प्रकार के संबंध उस विषपाई ने उन 16,000 आत्माओं के साथ जोड़े हैं। तो बड़े से बड़ा दुनिया का विषपाई हुआ या नहीं हुआ? ऐसा बड़ा था बड़ा विषपाई, बड़े से बड़ा दुर्योधन, दुष्ट शासन करने वाला दुशासन, दुनिया का बड़े से बड़ा पापी बनता है, फिर नियम क्या है? जो सतो प्रधान स्टेज में जो आत्मा बड़े से बड़ा पुण्यात्मा बनती है, वही कलयुग के अंत में बड़े से बड़ी पाप आत्मा भी बनती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने की। जो सृष्टि के सतो प्रधान पीरियड में सतयुग में रमिते योगिनो यस्मिन इति राम बनता है, वो त्रेता वाला राम नहीं, वही आत्मा कलयुग के अंत में राम सो रावण बन जाती है। रावण कहा ही जाता है परस्त्रीगामी को, परस्त्रीगामी रावण चोर है या नहीं है? है? चोर है। और भगवान को भारत के भक्तों ने द्वापर युग से बड़े से बड़ा चोर बना दिया। कृष्ण को क्या बना दिया? मक्खन चोर। और फिर बड़े मजे में गीत गाते हैं, झांझ बजाते हैं, कीर्तन गाते हैं, बैकुंठ करो गुजरान कृष्ण भगवान, भारत में अब मत आना, भारत में यदि तुम आओगे और चुरा के माखन खाओगे तो चोरी में जेल, जेल में चक्की, तुमको पड़े चलाना, भारत में अब मत आना। भारत में यदि तुम आओगे, फिर संगमयुग की बातें याद दिलाई, भारत में यदि तुम आओगे किसी की नारी से नैन लड़ाओगे तो पुलिस पकड़ ले जाए दिखावे थाना, भारत में अब मत आना। देखो भक्ति मार्ग के गीतों में भी कितनी सच्चाई भरी हुई है, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं है। तो दिखाया कि वो है हमारा बाबा। कौन है? हमारा बाबा, उस निराकार जो सिर्फ सत्य है। गाया जाता है सत्य चित्त आनंद है, और क्या गाया जाता? सत्यम शिवम सुंदरम गाया जाता है। और गाया कब जाता है? परमधाम में बैठा हुआ या इस सृष्टि में कोई मुकर्रर रथ में आता है तब गाया जाता है। मुकर्रर रथ में आता है तब गाया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, सबको सुंदरता अच्छी लगती है। किस बात की सुंदरता होती है? है? अरे सुंदरता किस बात की होती है? सुंदरता होती है प्योरिटी की, पवित्रता की। वो प्योरिटी कुमारों में नहीं होती, माताओं में नहीं होती, अदर कुमारों में भी नहीं होती। किस में होती है? क्यों? उसका प्रूफ, प्रूफ है भक्ति मार्ग में भी है कि जो सन्यासी इस दुनिया में अपने को बड़े से बड़ा पवित्र मानते हैं, वो भी कन्याओं की पूजा करते हैं, और कन्याओं में भी 9 साल 12 11 साल की छोटी कन्याएं जो थोड़ी समझदार होती हैं, उनको चुनते हैं। तो देखो कन्या का वो रूप ऐसा रूप है जो भगवान करता है, सारी दुनिया वो ही कार्य करती है। क्या भगवान क्या करता है जब इस सृष्टि पर आता है, तो किसको चुनता है? कन्याओं को चुनता है। और अगर माताओं को भी चुनता है तो उन माताओं को चुनता है जिन माताओं ने पूर्व के 63 जन्मों में पवित्रता को विशेष महत्व दिया है। महत्व देने के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार होने के कारण, भगवान से जब ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकली धारण करती हैं और माता से क्या बन जाती हैं? कन्या बन जाती है। पवित्रता को धारण करे ज्ञान में आने के बाद तो माता भी कन्या बन जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कोई माताएं तो सूपनखा पूतना रूप धारण करके नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है और कोई माताएं स्वर्ग का गेट खोलती हैं। नरक का गेट खोलने के पुरुषार्थ में नहीं लगती है। तो माताएं भी कन्या बन जाती हैं। तो वो चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो, या कि कोई कोई बिरले पुरुष भी हो जो बोला है कि अंत में युगल निकलेंगे जिनकी बहुत प्रशंसा होगी दुनिया में। कैसे युगल निकलेंगे? जो युगल रूप में साथ रहते रहते जैसे शंकर पार्वती को दिखाते हैं, भले जानते नहीं हैं कि वो शंकर पार्वती का संपन्न रूप क्या है। जो संपन्न रूप है शिव और जलाधारी, ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली जलाधारी, दोनों तन से धन से समय से संपर्क और संबंधियों से, संपर्कियों संबंधियों की ताकत लगाकर एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। एक दूसरे के अलावा और किसी के सहयोगी नहीं बनते हैं। सन्यासियों की तरह दूरबाज खुशबाज होकर नहीं जीवन में रहते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? हैं? तन से पत्नी का साथ देते हैं, नहीं देते। धन से साथ देते हैं, प्रॉपर्टी के साथ रहते हैं, नहीं रहते। हर प्रकार से दूरबाज खुशबाज। तो भगवान बाप कहते हैं कि मैं प्रवृत्ति की दुनिया स्थापन करने आता हूं, सन्यासियों की दुनिया स्थापन करने नहीं आता हूं। जो सन्यासियों की दुनिया है वह द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होती है, भले चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, वो भी संन्यास मार्ग के धर्म पिता है या जीवन में प्रवृत्ति को निभाने वाले है, है? वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स प्रवृत्ति को निभाने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं? उनकी परंपरा में आज भी उन धर्म पिताओं के धर्मखंडों में प्रवृत्ति को निभाने की बजाय जीवन में बार बार प्रवृत्ति को तोड़ना और बार बार नई प्रवृत्ति को जोड़ना ही चलता रहता है, निभाते नहीं है। और भगवान बाप क्या कहते, संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है लेकिन संबंध जीवन भर निभाना बड़ी बात है। तो भगवान बाप प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करने आते हैं, इसलिए आप समान 5000 वर्ष परमधाम में रहने वाला सन्यासी बनाने नहीं आते हैं। क्या बनाते आते हैं? प्रवृत्ति मार्ग का देवी देवता बनाने आते हैं। और उन देवी देवताओं को बनाने का श्रेय खुद नहीं लेते, जो प्रवृत्ति मार्ग में निभाने में अव्वल नंबर बनते हैं संगम में उनको देते हैं। अव्वल नंबर कौन बनते हैं? लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण रचना है या रचयिता है? कुछ कहते हैं रचना है, कुछ कहते हैं रचयिता है, है? कुमार और घड़ा, घड़ा रचना है, कुमार रचयिता है। घड़ा भी मिट्टी का और कुमार भी मिट्टी का, दोनों एक जैसे हैं ना, कि एक निराकार और एक साकार, दोनों साकार हैं। घड़ा भी साकार, कुमार भी साकार, तो रचयिता होता ही है साकार। निराकार आत्मा अकेले कोई भी प्रकार की रचना नहीं रच सकती, और निराकार आत्माओं का बाप भी कोई रचना अकेले नहीं रच सकता। इसलिए बाप कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़े से बड़ा बाप आता है तो मनुष्य सृष्टि में जो बड़े से बड़ी माँ कौन है? बड़े से बड़ी माँ का भी पार्ट बजाए और बड़े से बड़ा बाप का भी पार्ट बजाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम माने तू, एक या अनेक? एक। तो शंकर को नहीं कहा जा सकता रचयिता, शंकर का भी बाप कोई है या नहीं? शिव बाप है, शंकर त्रिमूर्ति में से एक बड़ी मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवता विष्णु देवता और शंकर महादेवता, देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव और शंकर महादेव। तो वो रचना है, रचयिता नहीं है। फिर बाप कहते हैं, जो बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं वो कहते हैं, कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बनाने आता हूँ। क्या बनाने आता हूँ? आप समान बनाने आता हूँ। मैं निराकारी तो तुमको भी नंबर वार निराकारी बनाता हूँ। निराकारी तो निर्विकारी और निरहंकारी, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि मैं निराकारी बाप त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकली करके दिखाए। शिव बाप को प्रैक्टिकली तन है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल कैसे करेगा? तो जिसमें प्रवेश करता है उसको युक्ति बताता है, ज्ञान देता है, रास्ता बताता है, और उसी को क्यों बताता है? उसी को क्यों बताता है? क्या खासियत? पक्षपात करता है? है? क्या
वो हमेशा साथ ही रहने वाला है?
अच्छा, तो परमधाम में रहता है 5000 साल? है
सत्य के ऊपर चलने
वाला, सत्य को पहचानने वाला है, सत्य को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाला है। अभी तो बताया सत्य जिसे सार कहा जाता है, प्योरिटी है, पवित्रता है, तो पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है, करता है हाँ। सत्य को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है या उसका जो सबसे बड़ा साथी है वो प्रैक्टिकल जीवन में सत्य अर्थात प्योरिटी को धारण करती है। जिसको भक्ति मार्ग में नाम दिया राधा, राम माने राम भगवान, धा माने धारण करने वाली, क्या दुनिया में इतनी बड़ी शक्ति जो कोई भी नहीं धारण कर सकता वो एक ही है, राधा महारानी कही जाती है। बाकी सब कितना भी पुरुषार्थ करने वाली हो, पुरुषार्थ के अंत में जब फाइनल पेपर होता है तो पट्ट पे जाके गिरती है और पट्ट रानी बन जाती है। एक महारानी और बाकी सब पट्ट रानी। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो जन्म जन्मांतर ये विरुद्ध धारण करती है। वरहु शंभु न तु रहु कुंवारी, वरण करूंगी कोई भी जीवन में तो एक को वरण करूंगी, एक आत्मा को, कोई दूसरी आत्मा को वरण नहीं करूंगी। कुआरा रहूंगी, जीवन में कुआरी रहूंगी, सन्यासी बनकर रहूंगी, लेकिन किसी दूसरे को वरूंगी नहीं। इतनी 500-700 करोड़ की दुनिया में कोई एक तो आत्मा जरूर होगी ना जो ऐसा विरुद्ध धारण कर सके। नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उसका नाम पड़ता है पार्वती। पार लगाने वाली, धनवती माना धन वाली, पार्वती माने ये दुनिया विषय सागर है, ये दुनिया विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय का सागर कहो, विषय विकारों के सागर से उस पार क्षीर सागर में ले जाने वाली, जहाँ स्त्री पुरुष खीर खंड होकर रहते हैं। खीर का क्या विशेषता है? चीनी, दूध, चावल तीनों मिलकर एक हो जाए, ऐसा परिवार बनाने वाली, ऐसे स्त्री पुरुष परिवार के रचयिता, जिनमें कभी भी किसी भी जन्म में आपस में झगड़ा नहीं होता, जैसे सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण कोई झगड़ा आपस में नहीं करते, ऐसे ही यथा राजा तथा प्रजा, प्रामाणे प्रकट, जा माने जन्म लेने वाली। जो सतयुग में प्रजा बनते हैं, उन प्रजा बनने वाली आत्माओं ने प्रजा बनने की शूटिंग कब की? संगम में। वो प्रकट जन्म हुआ क्या? सामान्य शरीर का जन्म नहीं है, मानसी सृष्टि है, अभी रिहर्सल हो रही है। हम जैसे जैसे संकल्प करते हैं, हमारे संकल्पों का बीज बोया जा रहा है। श्रीमत के अनुकूल संकल्प करते हैं तो हमारी स्वर्ग की सृष्टि बनती है, और श्रीमत के प्रतिकूल संकल्प करते हैं विपरीत, तो नरक की सृष्टि बनती है। अभी हमारी मुट्ठी में है, जन्म जन्मांतर की तकदीर हमारी मुट्ठी में है, चाहे तो सुख की देवताई सृष्टि बनाए और चाहे दुख की राक्षसी सृष्टि बनाए। इसलिए एक मुरली में कहा, उस मुरली का हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं मिला है, माउंट आबू का छपा हुआ, लेकिन कन्नड़ मुरली में बताया गया कि कोई कोई, ज्यादा नहीं, कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। क्या? कितने जन्म? 82-83 जन्म तक भी सुख में रहे, सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के दुखी हो ना। वो सामान्य पुरुषार्थियों के लिए, प्रजावर्ग की आत्माओं के लिए क्या वो बात कि तुम जो देवी देवता सनातन धर्म के फॉलोअर बच्चे हो, उनको दुनिया में तीन हिस्सा सुख और एक हिस्सा दुख मिलता है, बाकी दूसरे धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको आधा सुख और आधा दुख मिलता है। लेकिन तुम बच्चों में भी कोई कोई बच्चे हैं जो तीन हिस्सा सुख नहीं लेते, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। कितना सुख लेते हैं? 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं, दुखी नहीं होते। ऐसी सुखी सृष्टि में रहने वाली आत्माएं, उनका जो मुखिया होगा वो आत्मा सबसे जास्त्री श्रीमत को जानने वाली, मानने वाली और श्रीमत पर चलने वाली होगी या नहीं होगी? वो कौन? नहीं, राधा कहो या पार्वती कहो, क्योंकि जिसे हम राम कहते हैं यहाँ मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं, वो मनुष्य सृष्टि का बाप प्योरिटी को धारण करने वाला है, है? है? नहीं है। प्योरिटी को धारण करने वाली वो आत्मा है जो अभी भी पुरुषार्थी जीवन में पवित्र है, तन से भी, मन से भी, धन से भी और श्रीमत के अनुकूल संकल्पों से भी पवित्र है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिस आत्मा का नाम भक्ति मार्ग में गायन होता है राम, वो आत्मा जो इस जन्म में पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होती है, वही आत्मा सतयुग के संगम सहित 9 जन्मों को क्रॉस करने के बाद पुरुष बनती है। हिसाब लगा लो, इस जन्म में स्त्री तो 9वें जन्म में क्या होगी? स्त्री। हिसाब लगाओ, 9वें जन्म में स्त्री, सतयुग में अंतिम जन्म में, और त्रेता के फर्स्ट जन्म में पुरुष बनेगी, राम कही जाएगी। उस राम का नाम भक्ति मार्ग में इतना भक्तों ने बाला कर दिया, इसलिए बाबा कहते हैं राम वो त्रेता वाला नहीं है, राम संगम युग में राम बाप को कहा जाता, कृष्ण बच्चे को कहा जाता। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थी जीवन में शंकर के रूप में है, बड़ा देवता तो है लेकिन भगवान नहीं है। वो ही पुरुषार्थी जीवन धारण करने वाला पुरुषार्थ संपन्न होने पर साकार शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा दोनों से संपन्न बन जाता है। क्या बन जाता है? संपन्न बन जाता है। इसलिए मुरली में बोला, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया बाप एक ही है। आत्मा को भी विषय सागर से पार ले जाएगा और तुम्हारे शरीर को भी पार ले जाएगा। मैं बड़े से बड़ा वंडरफुल धोबी हूँ। क्या ऐसा धोबी नहीं हूँ जो कपड़े ले और फाड़ के रख दे, सड़ा के रख दे। मैं ऐसा धोबी हूँ कि तुम्हारे कपड़ों को क्या बना दूंगा? कंचन काया बना दूंगा, शरीर रूपी वस्त्र को। जो दुनियावी गुरु लोग हैं, उन्होंने भगवान के काम को अपने ऊपर डाल लिया। कबीर जी ने भगवान बन के लिख दिया शिवो हम। क्या लिखा? चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। क्या चदरिया माने? शरीर रूपी वस्त्र, उसको मैला कर दिया। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मैं ही भगवान हूँ। तो देखो, मनुष्य गुरुओं ने अपने को भगवान समझ करके अपने ऊपर बात ढाल दी। बात है भगवान की कि भगवान जिस तन में साकार होकर संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो शरीर रूपी 16,000 वस्त्रों को तो छोड़ो, यथा राजा तथा प्रजा 4.5 लाख वस्त्रों को, चदरियों को ज्यों का त्यों जैसे सतयुग में थे सोने के वस्त्र, ऐसा सोने का चोला बनाकर रख देता है। क्या? और मनुष्य जो है उस चदरिया को ओढ़ते हैं, कन्या पवित्र को धारण करते हैं जीवन में, और बड़पेटा माँ बना के रख देते हैं। क्या बना देते हैं? बड़ी शक्ल वाली माता बना के रख देते हैं। नहीं तो देवियों को माता के रूप में दिखाते हैं या कन्या के रूप में दिखाते हैं, वो किस समय की बात है। जो नौ कन्याएं, नौ देवियां कन्या के रूप में आज तक भी पूजी जाती हैं, एक भी देवी माता के रूप में मोटी कमर वाली नहीं दिखाते। ये अंतर पड़ जाता है, ये भगवान का करिश्मा है। क्या? ये शैतानों का करिश्मा नहीं है। वो भगवान जब आप समान भगवान भगवती बनाता है, तो जिनको भगवान भगवती बनाता है उनके जीवन में अमोघ वीर के गुण को धारण करा देता है। और वो अमोघ वीर किसके लिए गाया जाता है? शंकर के लिए गाते हैं। जो भक्तजन नहीं जानते कि शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग है, वही शंकर की आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर है, वही पुरुषार्थ करके तरते अंत में शिव समान शिवलिंग बन जाती है। साकार लिंग और निराकार बिंदु आत्मा दोनों का मेल बन जाती है। लोग आज भी समझते हैं। अरे लोगों की दुनिया की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं वो भी समझते हैं कि शिवलिंग निराकार शिव की यादगार है। नहीं, जो शिव है वो तो स्वयं ही वाणी में बोलता है, मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो सीढ़ी के चित्र में शुरुआत में जो पूजने वाला पुजारी है और जो पूज्य शिवलिंग सामने रखा है, वो पूज्य सो पुजारी एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, वो ही अपने स्वरूप को पूजती है। बाकी शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। इसलिए शिवलिंग का जो सात्विक रूप यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया? सोमनाथ मंदिर, पुराने थे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर, उसमें जो लिंग था वो साकार की यादगार है, बड़े रूप की। और इस लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था वो हीरा ब्रह्मा कुमार भी समझते हैं शिव की यादगार। और अभी तक अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले भी क्या समझते थे? शिव की यादगार है। शिव कहते हैं मेरा तो बिंदु ही है जिसका नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, मैं शरीर धारण करता ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था वो हीरा पत्थर है, जो नौ रत्न होते हैं, हीरा हो, पन्ना हो, मूंगा हो, माणिक हो, कोई भी रत्न हो, सब पत्थर ही तो हैं। अरे नवरत्न सारे ही पत्थर बुद्धि बनते हैं। शिव कभी भी एक क्षण के लिए भी इस पतित दुनिया में आने पर भी, पतितम कामी कांटे में आने पर भी कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। नौ रतन, नौ ग्रह वो पत्थर बुद्धि बनते हैं। उनमें जो फर्स्ट है हीरा, वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में जड़ा हुआ था वो हीरा मेरी यादगार नहीं है, मैं पूज्य बनता ही नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर में मेरी पूजा थोड़ी ही होती है, किसकी होती है? है जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूँ, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, उसको संग के रंग से आप समान बनाता हूँ, एवर प्योर बनाता हूँ। एवर प्योर सिर्फ कहने की मात्र नहीं है बात, प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनाता हूँ। कैसा एवर प्योर? कि स्त्री तन के साथ रहता है, स्त्री का अंग जो स्त्री कहा जाता है उसके साथ हूँ, सदा साथ होते हुए भी मैं अमोघ वीर्य बनाकर जाता हूँ, जिसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ। क्या बनाकर जाता हूँ? अमोघ वीर्य, अर्थात ऐसा वीर्य जो कभी क्षरित होता ही नहीं, संपन्न होने के बाद ऐसा अमोघ वीर्य, आप समान, अक्षर बना देता हूं। इसलिए गीता में बोला दो प्रकार की आत्माएं हैं दुनिया में, क्षर क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, नीचे गिरने वाली, और दूसरी अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होती। उनमें भी एक तीसरे प्रकार की और आत्मा है क्षर होने वाली आत्माओं में, जो परम पद पाती है, विष्णु पद पाती है। विष्णु माने नो विश एट ऑल, जिसके जीवन में विषय विकार होते ही नहीं। क्या प्रूफ है? प्रूफ है सर्प सर्पिणियों के ऊपर शैया बनाकर आराम से लेटा हुआ है, नहीं तो सर्प सर्पिणी बड़े कामी दिखाई जाते हैं। काम वासना में अगर कोई अव्वल नंबर प्राणी देखना हो तो सर्प का मिसाल है। उन सर्प सर्पणियों को शैया बनाए देता हूं और उन पर आराम से लेटा रहता हूं। मुझे और मेरी इंद्रियों को कोई प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता, कोई प्रकार का आवेग नहीं आता इंद्रियों में। इसलिए नाम रखा है विष्णु, नो विषय काल, संकल्प में भी विषय वासना का संकल्प नहीं, दृष्टि में भी विषैलापन नहीं, कोई इंद्रियों में विषैलापन नहीं। तो तीन प्रकार की आत्माएं हुई, एक निराकारी रूप में, आत्मिक रूप में अक्षर, बाकी सब आत्माएं क्षरित होने वाली। और क्षरित होने वाली आत्माओं में जो निराकारी भी बनती हैं और साकारी भी बनती हैं, उन आत्माओं के बीच एक ऐसा पुरुषार्थी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में अक्षर बन जाती है, बाप समान प्रैक्टिकल जीवन में बन जाती है। क्या जो शिव बाप कहते हैं मैं हूं एवर प्योर, लेकिन तुम बच्चे मास्टर एवर प्योर बनते हो। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए एवर प्योर हो नहीं, बनते हो। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनते हो उसका यादगार है शिव का मंदिर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर पुरुषार्थी का नाम है, याद का पुरुषार्थ करता है। और जब शंकर से बाप समान बन जाता है तो पुरुषार्थी से क्या बन जाता है, है? पुरुषार्थी रहता है या परमार्थी बन जाता है? परमार्थी बन जाता है। तो बताया हमारा बाबा बेहद का बाबा, ये नहीं कहा हमारा बाप, हमारा बेहद का बाप ये नहीं कहा, क्या बोला? हमारा बाबा, हमारा बेहद का बाबा। फिर से 5000 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। यह राजयोग की शिक्षा, कौन सी राजयोग की शिक्षा, कौन सी शिक्षा, इसमें क्या राज भरा हुआ है? यही राज भरा हुआ है, राज की बात जो छोटे बच्चे नहीं जानते। छोटे बच्चे बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, तब राज की बात वो जानते हैं कि बचपन में जानते हैं, तो कृष्ण बच्चे की बात नहीं है। जिस कृष्ण बच्चे को बच्चे के रूप में ही पूजा जाता है, बड़े रूप में कृष्ण की पूजा नहीं होती है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की होती है। तो जो बच्चा है, महात्मा तो है लेकिन भगवान नहीं है। क्या? क्योंकि वो राज की बात नहीं जानता। जो राज की बात नहीं जानता वो राजयोग कैसे सिखाएगा? तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ गाया हुआ है। शंकर शिव क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि शिव बाप है, शंकर बड़ा बच्चा है, इसलिए बच्चे का नाम बाद में और बाप का नाम पहले। इसलिए बाप और बेटा दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। मैं तुझ में समा जाऊं, तू सुझ में मुझ में समा जाए, कैसी स्टेट है? एक रूप हो जाए। शिव बाप अपना धाम, ऊंचे से ऊंचा धाम छोड़ करके इस पतित दुनिया में आते हैं, तो जिसका आधार लेते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम। लेकिन ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं। हाँ, उनमें जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा है, जैसे भारत में भी पुरुष की एक स्त्री मर जाती है, मुरली में बोला तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी ले लेते हैं, दूसरी मर जाती है तीसरा कर लेते हैं, तीसरी मर जाती है चौथी पत्नी कर लेते हैं। तो ये परंपरा किसने डाली है? संगम में तो डाली, लेकिन डाली किसने? शिव बाबा ने, शिव बाप ने। ये परंपरा प्रैक्टिकल में डालने वाला वो बाप है जो बड़े से बड़ा बाप है, उसने ये परंपरा डाली। जिस तन में प्रवेश करता हूँ पहले, वो पहली अम्मा परिवार की, फिर जिसमें दूसरे नंबर में प्रवेश किया वो परिवार की उससे छोटी अम्मा, फिर नंबर बार तीसरी अम्मा, फिर नंबर बार चौथी अम्मा। तो बड़ी छोटी हो गई कि नहीं? छोटी अम्माओं को बड़ी अम्मा का डायरेक्शन फॉलो करना पड़े या नहीं करना पड़े? बड़ी अम्मा का जो बच्चा पैदा होगा और छोटी अम्माओं के जो बच्चे पैदा होंगे, बाप अपना पहला पहला वर्षा किसको देगा? बड़े बच्चे को देगा। ये परंपरा आज तक भी भारत में चली आ रही है। तो देखो, हमारा बाबा जो 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे, पूछा कौन दे रहे हैं? दे रहे हैं। किस समय की बात? टाइम बताओ। दे रहे हैं माने वर्तमान काल की बात बताइए। कब की बात? कौन सा वर्तमान सन बताओ? है 66। लेकिन 66 में जो वाणी चलाई गई वो सुनने सुनाने तक सीमित रही, बुद्धि में बैठी नहीं, क्योंकि जिसने सुना सुना पहले नंबर में, और जिसने सबसे जास्ती सुना ब्रह्मा की आत्मा ने, उसकी बुद्धि में बैठा ही नहीं कि प्रैक्टिकल जीवन में इस मनुष्य शक्ति में नई शक्ति बनाने वाला प्रैक्टिकल बाप कौन। यज्ञ के आदि में भी नहीं पहचाना, और जब ये वाणी चल रही है उस समय भी नहीं पहचाना, और उस ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं, जब बाप ही नहीं जानता तो बच्चे कैसे जानेंगे? तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहने वाले वो भी नहीं जानते कि बाप कौन है। इसलिए बताया कि तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि तुम्हारा 84वां जन्म अब पूरा होने वाला है। क्या नई राजधानी स्थापन होने वाली है, और नई राजधानी में जो भी राजधानी संभालने वाले दिग्पाल होंगे, सारी दुनिया दसों दशाओं के पालने वाले वो दसों दिग्पाल, उनके फॉलोअर्स तुम बच्चे हो, सूर्यवंशी हो, तुमने बाबा को पहचाना, और दुनिया में कोई वंश वालों ने, इस्लामी वंश वाले हो, बौद्धि वंश वाले हो, ब्रह्मा वंश वाले हो, कोई ने नहीं जाना, तुम बच्चों ने जाना। इसलिए तुम बच्चों में कितने ही अवगुण हैं जो मिसाल देते हैं, दुनिया में एक निर्गुण बालकों की भी संस्था हुई थी। कैसे बालकों? निर्गुण बालकों, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप कहते हैं दुनिया के हिसाब से कोई तुम्हारे अंदर गुण हो या न हो, लेकिन बाप को जिस गुण की जरूरत है वो गुण तुम बच्चों में ही है और बच्चों में नहीं है। क्या गुण? बाप की पहचान। तुम बच्चों ने पहचाना, न ब्रह्मा वंशियों ने पहचाना, न इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि वंशों ने पहचाना, तुम बच्चों ने पहचाना। इसलिए मेरे लिए तो तुम ही मेरे बच्चे हो। इसलिए बोला तुम बच्चों के लिए कि हमारा बाबा बेहद का बाबा फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ये ज्ञान का सागर, क्योंकि बाप ने समझाया ना बच्चे, ऐसे तो कोई भी नहीं समझा सकता है। कैसे? हे मेरे बच्चे, है मेरे मेरे बच्चे कहकर ऐसे कोई साधु संत धर्म पिता नहीं समझाता है। जब सारी दुनिया जानती है कि गीता कृष्ण ने गाई है, तो बाप फिर कहते हैं, अरे कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, उस बच्चा बुद्धि में तो राज की कोई बातों का ज्ञान है ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान बच्चा बुद्धि में तो बैठ ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कृष्ण का जो आगे का जन्म है, क्या कृष्ण की आत्मा का जो आगे का जन्म है माने सतयुग का पहला जन्म, जब संपन्न स्टेज को पहुंचता है, वो आत्मा संपन्न स्टेज में पहुंचेगी तो पहला जन्म लेगी, तो वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो आगे का जन्म है, जिसका नाम मैंने खुद आकर के जो सतयुग का पहला जन्म वाला सृष्टि का पहला पत्ता है उसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। क्या किसने रखा? मैंने ब्रह्मा रखा। अरे तुम्हारा तो मुख ही नहीं है, तुमने कहां से रख दिया ब्रह्मा नाम? तो क्यों कहा कि मैंने ब्रह्मा नाम रखा? हैं? हाँ, सन 36-37 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों का अर्थ तो वो खुद नहीं जान सके, उनके गुरु ने भी मना कर दिया। वाराणसी में अनेक विद्वान आचार्यों से पूछा, कोई ने नहीं बताया। तो अपनी दुकान का जो भागीदार था, जिसको 10 साल से मैनेजर बनाया हुआ था, जिसकी सच्चाई पर बाबा को बहुत विश्वास था, जिसके ऊपर सारी दुकान सौंप करके खुद ब्रह्मा बाबा सत्संग करने चले गए थे सिंध हैदराबाद में, सारी दुकान सौंप दी, इतना विश्वास था, उसके पास पहुंचे, वो भी हीरों का छोटा सा व्यापारी था, लेकिन उसकी छोटी सी दुकान थी और ब्रह्मा बाबा की बड़ी भव्य दुकान थी, राजे महाराजाए उन्हें बुलाते थे, तो हीरों का बाजार हो, कोई छोटा दुकानदार हो, छोटी दुकान रखने वाला, तो उस दुकान को देख करके लोग छोटी दुकान पे जाएंगे या बड़े दुकान पे जाएंगे? सब बड़े दुकान पे जाने वाले थे, छोटी दुकान चलती ही नहीं थी। ब्रह्मा बाबा का वो बहनोई था, तो बाबा ने देखा कि मेरी तो लागत अब इस धंधे में नहीं लग रही है, तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो सच्चा हो, साफ दिल हो, तो उन्हें कोई नजर नहीं आया, वही बहनोई नजर आया जो गरीब हीरों का व्यापारी था। उसको कहा, हम तुम्हें इतना धन देंगे जो तुम अपनी दुकान में कभी नहीं कमा पाए, हमारे यहाँ आकर के हमारी दुकान संभालो। तो ठीक, जब बाबा को अपने साक्षात्कारों का रहस्य उस भागीदार से पता चला, तो साक्षात्कारों का अर्थ जाना कि जो सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ उसका मतलब है तुम्हें ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। तो बाबा ने प्रैक्टिकली साक्षात्कार किया था, और कोई ने तो किया नहीं, भागीदार ने तो साक्षात्कार का अर्थ बताया, खुद तो साक्षात्कार नहीं किया था। तो ब्रह्मा बाबा को निश्चय पक्का बैठ गया कि मैं क्या बनने वाला हूँ, ब्रह्मा बनने वाला हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का, एटमिक के विस्फोट का बिना साक्षात्कार हुआ। ये सारी साक्षात्कारों का अर्थ जब पता चल गया तो साबित हो गया कि ब्रह्मा नाम किसने रखा है, बागीदार के मुख से शिव बाप ने रखा। तो प्रैक्टिकली बड़ी माँ कौन हुई है, कौन दादा लेखराज बड़ी ब्रह्मा हुई, वो ब्रह्मा रचयिता है या रचना है, है? रचना है। रचयिता कौन हुआ, वो ही भागीदार जिसने दादा लेखराज को कहा कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना। इसलिए आज तक भी परंपरा में, आज गवर्नमेंट में ये नियम बना हुआ है, हिंदुओं के अंदर कि हिंदू परिवार में जो पहली माता है वो जब तक परमिशन न दे तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो वो बड़ी माँ हुई परम ब्रह्म, और ब्रह्मा बाद वाला हुआ। तो बताया हमारा बाबा बेहद का बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। फिर पूछा कौन दे रहे हैं, हमारा बाबा। अरे और धर्म वंशों का बाबा नहीं, उनका बाबा क्यों नहीं है? ₹500-700 करोड़ की दुनिया, जो भी देहधारी मनुष्य हैं, सबको जन्म मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, विनाशी शरीर नहीं हूँ। ये जन्म तो आत्मा का सबको मिलना है, लेकिन जन्म लेना एक बात और जन्म लेने के बाद पूरा जीवन धारण करना अलग बात। तो जो आत्माएं पहचान तो लेती हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लेकिन उस पहचान को अंतिम क्षणों तक, जब तक माया का फाइनल पेपर न हो जाए तब तक उसे धारण करना, ये नंबर वार है। तो जो आत्माएं प्रैक्टिकल पुरुषार्थी जीवन में अपन को आत्मा समझ लेती हैं, आत्मिक रूप में स्थिर हो जाती हैं, देवान का नशा खत्म हो जाता है, वो आत्माओं के लिए कहा हमारा बाबा। दूसरे धर्म वाली आत्माएं हमारा बाबा नहीं कह सकती, क्योंकि वो कुछ न कुछ देवान में आ जाती है। देवान में आने के कारण पूरे 84 जन्म नहीं ले पाती, कम जन्म लेती है, कम कला वाले बनते हैं, और वो ही कम कलाएं वाली आत्मा, कमजोर आत्मा द्वैतवादी द्वापर युग में धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। सबको हिस्ट्री का पता है, दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। कौन से देश के लोग कन्वर्ट हुए, भारतवासी ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। भारतवासियों की संख्या बहुत कम हो गई और दूसरे धर्म वालों की संख्या दुनिया में बढ़ गई। तो हमारा बाबा क्या कहा है, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका बाबा उनका नहीं, हमारा बाबा हमको राजयोग का ज्ञान दे रहे। सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती है और हम अपने बाबा को क्या मानते हैं? गीता का ज्ञान देने वाला असली दाता है, क्योंकि वो राज की बात को जानता है। क्या राज की बात? कि एक के संग के रंग से जो ऊंचे ते ऊंचा है इस सृष्टि में, हीरो पार्टधारी है, उसके संग के रंग से हम राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बन सकते हैं और बनते भी हैं। अनेकों के संग के रंग से हम नीचे गिरते गए और हम अधीन बन गए विदेशियों के, क्या विदेशियों के दास दासी जैसे बन पड़े। अभी हमारी मेंटेलिटी भारतवासियों की ये हो गई है कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं हम कलेक्टर की नौकरी पा रहे हैं, हम बालेक्टर बन रहे हैं, हम डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं, ऊंचे के ऊंचे नौकर बन रहे हैं। नौकर माने दास दासी, तो दास दासी बनने में बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। आधीन है या स्वाधीन है? आधीन है। कितना भी बड़ा अधिकारी हो लेकिन नेताओं के अंडर में रहना ही पड़ता है। कितना भी बड़ा अधिकारी या नेता हो मिनिस्टर्स के अंडर में रहना ही पड़ता है। कितना भी ऊंचा मिनिस्टर हो उस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है। और कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो क्या उस प्राइम मिनिस्टर को भी जो इस भारत का धृतराष्ट्र है, धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने इस भारत देश के गरीबों की चालाकी से ढेर सारी धन संपत्ति धर रखी है, टाटा बिरला डालमिया चालाकी से इतने धनवान बन गए या पसीने की कमाई खा के बन गए, तो वो धृतराष्ट्र हैं। वो धृतराष्ट्र उन प्राइम मिनिस्टरों को नेताओं को अगर चुनाव लड़ने के लिए पैसे न दे तो वो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो देखो सब दास दासी बने पड़े, सब अधीन हैं, कोई स्वाधीन नहीं, क्योंकि स्वाधीनता का अर्थ ही नहीं जानते। स्व माने आत्मा, अधीन माने आत्मा के अधीन। किसके अधीन? आत्मिक शक्ति के अधीन। देह को आत्मा नहीं कहा जाता, देह के अधीन नहीं, किसके अधीन? आत्मा के अधीन। और आत्मा की अधीनता वो ही सिखा सकता है जो सदैव आत्मा हो, कभी भी देह के बंधन में ना आता हो। वो कौन है? है एक ही आत्मा है जो कभी देह के बंधन में नहीं आती, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और सभी आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है, उसकी आत्मा का नाम है, उसकी देह का नाम नहीं है, क्या? शिव। तो वो शिव बाप के हम बच्चे है। और वो शिव बाप कहते हैं कि मैं छोरी का ज्ञाता हूँ, क्या? मैं थ्योरी का ज्ञान देता हूँ, सच्चाई का ज्ञान तो मेरे पास है, लेकिन थ्योरेटिकल सच्चाई है, प्रैक्टिकल सच्चाई मेरे पास नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल तब होता है जब शरीर के साथ किया जाए, शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ किया जाए तब प्रैक्टिकल होता है। मेरे तो कर्मेंद्रियां और शरीर है नहीं, इसलिए मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसके द्वारा जो ज्ञान तुमको प्रैक्टिकल जीवन में मिलता है वो ही तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वाधीनता दिलाने वाला ज्ञान है। पहले देह में रहते स्वयं स्वतंत्र बनो, फिर दूसरों को बनाओ। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। कैसे स्वतंत्र रहो? आत्मा के तंत्र में रहो, देह के तंत्र में नहीं। देह को कंट्रोल करने वाली 9 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। इंद्रियों के कंट्रोल में रहने वाले नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन के भी कंट्रोल में रहने वाले नहीं। जो अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान ये मन बड़ा दुष्कर है कंट्रोल करना, ये बड़ा चंचल है, ये मन सभी इंद्रियों का मुखिया, सारी इंद्रियों को चंचल बनाता है। क्या? सारी इंद्रियों को चंचल बनाता है। तो सबसे जास्ती चंचल कौन है? मन। इसलिए गीता के चित्र में दिखाया पृष्ठ पर, अर्जुन का शरीर रूपी रथ और उसको चलाने वाले इंद्रियों रूपी घोड़े, और उन्हीं घोड़ों में से मुखिया हैं 2, एक दाई ओर का बैल गाड़ी चलाने वाला, शरीर रूपी गाड़ी है ना, एक बाई ओर का बैल। पहले पहले जब इंडियन कांग्रेस बनी तो उसकी निशानी क्या थी? 2 बैलों की जोड़ी, एक राइटियस बैल और एक लेफ्टिस्ट। जो किसान गाड़ी चलाते हैं बैलों की, वो जानते हैं कि उन्हें कैसे चलाया जाता है। एक के लिए कहेंगे आ आ आ आ आ, क्या आ कहेंगे, जा नहीं कहेंगे, क्या आ, और दूसरे को कहेंगे टिक 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 टिक। जो बहुत बोलता है लेकिन निरर्थक बोलता है उसके लिए कहता है बहुत टिक टिक करता है, हैं? बुद्धिमत्ता की बात नहीं करता है। तो बाई ओर का बैल है दादा लेखराज ब्रह्मा। जो दादा लेखराज ब्रह्मा जिस समय शिव प्रवेश करते हैं तो भी बीच में इंटरफियर करके बोलता है, अपने ही टिक टिक लगाए रहता है। बाबा मुरली में कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है, तब तो विश्व के महाराजा हैं, विश्व को कंट्रोल करने वाले। ब्रह्मा बाबा इस बात को नहीं समझते, कहते ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, वहीं पर बोल दिया। अभी अभी शिव बाप बोलते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है, तब तो विश्व के मालिक हैं, हैं? ये शिव बाप बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा जी की में बोल पड़े। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। अरे वो कहाँ की बात कह रहे? सतयुग के बुद्धुओं की बात कह रहे, क्योंकि वो तो सतयुग के बुद्धू बनेंगे। और शिव बाप कहाँ की बात कह रहे? संगम युग में जिसको नर से डायरेक्ट नारायण बनाते हैं उसकी बात कह रहे। तो देखो कितना अंतर हो गया। एक आत्मा फालतू टिक टिक करके बीच में घुस पड़ती है, वो टिक टिक करने की आदत है। ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया तो भी टिक टिक किया, और फिर दूसरी मूर्ति शंकर, शंकर में वो ही अधूरी ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है मस्तक में अधूरे चंद्रमा के रूप में, तो भी टिक टिक करती है। शिव बाप कहते हैं मुझे तो पढ़ने लिखने की दरकार नहीं है, पढ़ना लिखना ये मनुष्य आत्माओं का काम है। क्या पढ़ना? शास्त्र पढ़ना ये किसका काम है? मनुष्य आत्माओं का काम। तो जो कागज की मुरली है टीचर के रूप में जो पढ़ता है वो कौन सी आत्मा, और उस मुरली की व्याख्या कौन सी आत्मा करती है? इसलिए कोई ने बोला है राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। अरे सुप्रीम टीचर के रूप में शिव की आत्मा पार्ट बजाती है या मनुष्य आत्मा पार्ट बजाती है? हैं? शिव की आत्मा पार्ट बजाती है। शिव की आत्मा व्याख्या देती है, गीता माता के रोम रोम की व्याख्या, माता है ना, माता के रोम रोम को माता का पति जानेगा या बच्चे जानेंगे? तो रोम रोम की व्याख्या पिता देता है, जो बाप भी है टीचर भी है और सदगुरु भी है, तो वो सुप्रीम टीचर के रूप में व्याख्या देता है। फिर मुरली पढ़ता कौन है? राम की आत्मा मुरली नहीं पढ़ेगी। क्या? राम की आत्मा मुरली नहीं पढ़ेगी, क्योंकि वो तो यज्ञ के आदि से ही जान चुकी कि बाप कौन है। और 66 से तो बाबा ने ही मुरली में क्लियर कर दिया। इन नारायण का जन्म कब हुआ? हिसाब से आता है 76। तो 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से बाप ने लिया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, मनुष्य शक्ति के बाप ने प्रत्यक्षता वर्ष में जन्म लिया। तो वो आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में अपने पार्ट को स्वीकार कर लेती है, मान लेती है, जान लेती है, तो उसे इस ज्ञान की जरूरत है कि बाप कौन है। ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जानने के लिए? ज्ञान के ढेर पॉइंट, उन सभी पॉइंटों में मुख्य पॉइंट क्या है जानने के लिए? बाप की पहचान। वो बाप की पहचान, कोई कहता है राम वाली आत्मा वर्तमान में बाप है। अरे वर्तमान में अधूरा है कि मनुष्य शक्ति का बाप है? जो अधूरा है वो मनुष्य शक्ति का बाप हो सकता है? 16 कला संपूर्ण देवताओं का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्तमान में तो पुरुषार्थी है, कोई कहते हैं शंकर है, कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जैसे कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, फिर कोई कहते हैं गणेश है, कोई कहते हैं हनुमान है, कोई कहते हैं जगदम्बा है, कोई कहते हैं क्या है, कोई क्या। वास्तव में जो बाप कहते हैं मुरली में बार बार कि पहले पहले किसका पूरा परिचय देना चाहिए, बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए। क्या? क्योंकि बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा इसका मतलब जास्ती टिक टिक करने से कोई फायदा नहीं है, वो हमारे कुल का है ही नहीं। हमारे कुल का होने का प्रूफ क्या बताया है? हमारे कुल का होगा तो थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे और वो चिपक के बैठ जाएगा हमको, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ कोई बच्चा बाप को मिलता है तो कितने प्यार से मिलता है। तो बाप का परिचय भी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा माया लेगी फाइनल पेपर में और देखेगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो औरों की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में अभी तक भी नंबर वार आते रहे हैं और फाइनल पेपर में फिर भी आ जाएंगे, औरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे और बाप को भूल जाएंगे। फिर भी छोटे बच्चे हों या बाप के बड़े बच्चे हों या बड़े में बड़ा बच्चा हो, अगर वास्तव में बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हैं तो बच्चे ना, छोटे हैं या बड़े। जो बड़े बच्चे होंगे वो अंत तक बाप को नहीं भूलेंगे। क्या? अंत तक नहीं भूलेंगे। और नंबर वार छोटे होंगे तो भूलेंगे पहले, अभी भी भूल जाते हैं और भूल करके बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो छोटे में छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे में छोटे हुए। छोटा पद पाने वाले हैं, आए तो हैं, सरेंडर भी हुए, लेकिन बाप कहते हैं जो सरेंडर होकर के चले जाते हैं बाहर की दुनिया में चले जाते हैं वो प्रजावर्ग में चांडाल बनेंगे। कौन सी प्रजा में? इस्लामियों की प्रजा में, चंद्रवंशियों की प्रजा में, क्रिश्चियंस की प्रजा में या सूर्यवंशी की प्रजा में? सूर्यवंशियों की प्रजा में चांडाल बनेंगे, नीचे से नीचे बनेंगे। फिर ऊंचा पद पाने वाले भी तो होंगे हैं? राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। तो 4.5 लाख बच्चे हैं, वो 4.5 लाख बच्चे सब नंबर वार हैं। फाइनल पेपर माया का होगा जो अभी हुआ नहीं है, घोषणा कर दी। क्या? कि तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लेते हो, तो वो 76 से लेकर के 2017 तक 40 वर्ष पूरे होते हैं। उनमें कोई एक बच्चा निकलता है 100% सत्य, पूरा बाप को पहचानने वाला। दुनिया में कोई हैसियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं जो उसको हिला सके। क्या? जिसकी यादगार माउंट आबू में बताई हैं? अचल गढ़ रामायण में दिखाया अंगद, ये शरीर के अंग हैं, जो अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिए तो नाम पड़ा अंगद। वो अंगद पांव टिका देता है, सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है। कि अभी कोई राम संप्रदाय भी है? हैं? सब रावण संप्रदाय। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ से, जो आदि में सोई अंत में होने वाला है। सारी दुनिया मीडिया के चक्कर में आ जाएगी, अखबार वालों के दबाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताएं आ जाएंगे, सब भ्रष्टाचारी हैं। वो भ्रष्टाचारी नोटों की गड्डियों के आगे माथा टिकाई देंगे। क्या करेंगे? हैं? माथा टिकाई देंगे, सत्य का आसरा लेंगे या झूठों का आसरा लेंगे? झूठों को सहयोग देंगे, सत्य को सहयोग नहीं देंगे। तो फाइनल परीक्षा होगी क्या, कि कौन कौन है नंबर वार, जो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, और जिनके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे। शिव बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? और नंबर वार बनाने आया है या अब्बल नंबर राजा बनाने आया है? हैं? अब्बल नंबर राजा, वो तो अल्लाह अब्बल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं, अल्लाह अब्बल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। जिसने अब्बल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की, वो मुसलमान भी जानते हैं कि दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था, जो भारत में सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है, उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचे से ऊंचा, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली माने हेवन स्थापन करने वाला। और धर्म पिता हैं, ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करते, और वो स्वर्ग स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताएं इस दुनिया को आकर के नरक से रौरव नरक बनाए देते हैं, और वो अल्लाह बलिन स्वर्ग बना के जाता है। तो उसके लिए बोला, तुम बच्चे हो जो कहते हो हमारा बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, वो ज्ञान का सागर है। क्या? ज्ञान का सागर है। उस सागर में सारी नदियां समा जाती हैं। क्या? सारी नदियां, बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी नदियां, बड़े से बड़े तालाब, बड़े से बड़ी झीलें, पोखरे, गद्दे गड़ीचियां जिनमें थोड़ा बहुत जल रहता है, द्रौपदी कुंड जैसे, वो सांप का जल सागर में समा जाएगा। सागर इतना विशाल रूप धारण करेगा कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। क्या होगा? जलमयी हो जाएगी, सब सागर में समा जाएंगे। सागर रहेगा और सबको डुबो देगा। कौन रहेगा? जड़ सागर या चैतन्य सागर? भी चैतन्य सागर रहेगा। कहाँ रहेगा? सारी दुनिया तो डूब जाएगी, फिर रहेगा कहाँ? दिल्ली में रहेगा है? बोला जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों में डूब जाते हो, दलदल में, तुम्हारी चोटी पकड़ करके खींचता हूँ। क्या? किसको खींचता हूँ? ब्राह्मण चोटी, जो ब्राह्मणों में चोटी के समान है, सबसे ऊंची चोटी, जिसमें याद की गांठ लगती है तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। वो शिवलिंग जो दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में, सभी देशों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के हैं। ऐसी सार्वभौम सत्ता वाला वो आत्मा जो सबके दिलों पर विराजमान हो जाती है। क्या? सबका दिल वाला है। क्या है? सबका दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला, कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है। कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबर वार हैं देने वाले तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूँ और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूँ। क्या? 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की क्षेत्र में स्थापना हो जाएगी। वो दो का संगठन था, उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 76 के बाद। तो लगा या नहीं लगा? लग गया। उस ऊंचे का ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ, उसके बाद तो टू लेट का बोर्ड लग गया, अब कोई बन ही नहीं सकता उस संगठन में। उसके बाद 8 का संगठन, वो 8 का संगठन फिर 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नई दुनिया की छोटी सी राजधानी स्थापन होने वाली है। उस राजधानी में वो आठ की माला का संगठन तैयार होगा, जो आठ मण के शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां जो शिव के मस्तक पर रखी जाती हैं। क्या? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा, जो आठ में आने वाले होंगे उनको अष्ट रह, कितने रह? अष्ट। उन आठ को अष्ट रह में ही पता लग जाएगा कि हम आठ के माला के अंदर आ गए, बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन, जो राजाएं बनते हैं वो 108 की माला का, विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। 108 आत्मा रूपी मण के युगल मण के, क्या सिंगल मण के नहीं, सिंगल मण के भी प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला, रुद्रमाला के ऊपर फूल होता है, डबल मण का नहीं होता, और विजय माला के ऊपर डबल मण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विजय माला में 109 मण के होते हैं, नहीं, जो 108 मण के हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग का साबित करने के लिए वो डबल मण का दिखाया गया है, भगवान भगवती के रूप में। वो डबल मण का नौवा नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। है 108 पेयर्स, 108 जोड़े, तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे वो भी टाइम बता दिया। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा, फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37 38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे। क्या? लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई पढ़ाई होती नहीं। जब शांति का टाइम रहा तब तक तो दूसरे धर्म पिताओं ने अहंकार में रहने के कारण ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान को कुछ समझा ही नहीं। और जब अशांति का टाइम शुरू हो जाता है तो ले नहीं पाते, इसलिए आएंगे सलामी तो भरेंगे लेकिन अंदर से मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रावण संप्रदाय के मुख हैं। किसके मुख हैं? रावण के मुख। रावण क्या करता था? अंदर से जानता था, समझ गया कि ये भगवान है, ऊंचे से ऊंची सत्ता है, लेकिन अपने देह के अहंकार में आने के कारण वो कहता था मेरे से लड़ाई लड़के जीतेगा तो मानूंगा, मेरी सत्ता से टकराए और टकरा के जीत पाके दिखाए तब मानूंगा। क्या ये भगवान है? नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कोई साकार भगवान होता है, क्योंकि धर्म पिताओं ने तो द्वैतवादी द्वापर युग में जब से आना शुरू हुए उन्होंने निराकार को ही भगवान माना, कभी साकार को भगवान माना ही नहीं। इसीलिए अंतिम जीवन में भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिरी क्या होगा है? क्या होगा आखिरी? मौत सर पर टकराएगी। क्या? सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी। जैसे 76 में जो मुकर्रर रथ मनुष्य शक्ति का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो माउंट आबू में जा नहीं सकता था, और फिर उसके जो सहयोगी बने वो भी जाने से डरते थे। और अभी क्या हुआ? अभी अभी सच्चाई सर पर चढ़ करके बोल रही है। हर साल प्लान बनाते हैं, अरे तुम्हारा कोई असर करेंगे, जो तुम्हारे बाबा का जेल में सड़ते रहने से हुआ, एक एक तुम्हारे मिनी मधुवन पर ऐसा डंडा बजेगा जैसा बाबा टाबा भूल जाओगे। और वो प्लान संपन्नता में प्रैक्टिकल में लाने के लिए हर साल प्रयत्न करते हैं, हर साल मंसूबा बांधते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। आखिरीन जब कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, जब पानी नाक से ऊपर आने लग पड़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है, क्या अभी तक तो ये कह के डांटते रहे, लोगों को समझाते रहे, अरे भगवान पहले साकार में आता था, अभी भी साकार में गुलजार दादी में आता है, अब तो गुलजार दादी का भी मुंह बंद करने लगे, अरे बाबा आप क्या बोल रहे हैं, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, आप माउंट आबू में बोल रहे हैं। बाबा बार बार दोहराते हैं दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सबको जाकर के देखना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुंह बंद कर दिया। तो जब मुंह बंद करने लगेंगे तो ब्रह्मा बाबा बिचारे क्या करेंगे? अरे ये तो सोचेंगे जिस मुख का आधार लेकर के मैं तुम्हें इतनी सच्चाई बातें सुना रहा हूँ, तुमको धारणा के पॉइंट दे करके देवी देवता बना रहा हूँ हैं, और तुम मेरा ही मुंह बंद कर रहे हो। अच्छा वो मुख ही नहीं रहेगा, खेल पहले ही खलास कर देता हूँ। वो तो कुमार का दादा जी का भी कई दिन तक नहीं बताया, और जगदीश भाई का भी कई दिन तक नहीं बताया। गुलजार शादी तो पोस्टरों में त्रिमूर्ति में जब छापी गई तो उनको नीचे स्तर पर मूर्ति दिखाया गया, ऊपर की मूर्ति कुमार का दादी, बीच की मूर्ति जानकी दादी, और नीचे स्तर की मूर्ति गुलजार दादी।
15 तारीख से ऐसा जायरत हो गया उधर, फिर छोड़ दिया 15 तारीख
को। धीरज धरो, नाई के बाल आगे ही आने जाते हैं। अच्छा कुछ भी सही, तो अब तो सबको संशय पैदा होता है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कि पहले तो ब्रह्मा बाबा ने ही निश्चित कर दिया कि हम जिस संदेशी का नाम सजेस्ट करेंगे उसमें ही आकर के वाणी चलाएंगे, और बाद में गुलजार दादी का नाम सजेस्ट कर दिया, आते रहे। अब क्या होगा, तो अब तो स्पष्ट कर दिया कि तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लेते हो। तुम बच्चे का मतलब यह है, एक नहीं है क्या, पूरी राजधानी तैयार होती है। पूरी का मतलब वो जो भी संगठन बनेगा राजधानी का, उस संगठन में 100% सूर्यवंशी ही होंगे, कमजोर राजधानी के मणके नहीं होंगे पहली राजधानी के। क्या एक भी ईंट खंजर और सैम ईंट नहीं होगी, अब्बल नंबर ईंट होगी। तो वो संगठन तैयार होने जा रहा है, वो राजधानी बनेगी तो पहले से ही बता दिया, पहले राजधानी बनेगी कि पहले विनाश होगा, पहले राजधानी बनेगी फिर विनाश शुरू हो जाएगा। जितनी जितनी तुम्हारी राजधानी स्थापन होती जावेगी उतना ही बड़ा विनाश सामने आता जाएगा। तो अब तो क्या होगा, अभी ब्रह्मा बाबा अभी तक नहीं मानते थे कि गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज है या कोई दूसरा है, अभी तक भी नहीं मानते। अब क्या कहते हैं, राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है, दिल्ली में स्थापन हो रही है। इसका मतलब जान गए क्या, कि दिल्ली में जो मधुबन का हेड ऑफिस है, जहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, जहाँ ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा संगठन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारों का बड़े से बड़ा संगठन, ब्रह्मा कुमारियों के भी ढेर सेंटर हैं, लेकिन सब आपस में लड़ रहे हैं, एक ने भी प्योरिटी की यूनिटी से, प्योरिटी की पावर से दिल्ली में एक भी संगठन ऐसा किला बना के तैयार नहीं किया है जिस किले में बैठ करके ऑल इंडिया के बच्चों को इकट्ठा कर सकें, जैसे माउंट आबू में अभी तक कर रहे हैं। और जो एडवांस पार्टी है उसने अपना एक स्थान तैयार कर लिया, और जो वर्तमान दुनियावी तरीके से प्रशासनिक संगठन है, दुनियावी गवर्नमेंट है, उससे टक्कर भी ले रहे हैं। क्या टक्कर ले रहे हैं? कैसी टक्कर? एक से एक बड़े बड़े परिवारों की कन्याएं भाग भाग के आ रही हैं। भागवत प्रसिद्ध प्रैक्टिकल भागवत हो रही है और झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या गंदे गंदे केस में फंसाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब फेल। एक में भी भ्रष्टाचारियों की जीत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दुनिया की एक ही शख्सियत है जो कभी भी युद्ध में हार नहीं खाती है, सदा विजयी हुई है। भगवान बाप से ये वरदान मिला हुआ है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो ब्रह्मा बाबा को ये प्रैक्टिकल बात देख करके निश्चय पक्का हो गया कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से टक्कर लेने वाली ईश्वरीय गवर्नमेंट कहां दिल्ली में तैयार हो रही है। सबको ब्राह्मणों को वहां जाकर के देखना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ रहा है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ है। और इससे पहले की अव्यक्तवाणी में पिछले साल इशारा भी दे दिया कि तुम बच्चे जो स्मृति दिवस मनाते हो 18 जनवरी, वो सच्चा स्मृति दिवस नहीं है, बाप और बच्चे का मिलन का दिवस नहीं है। बाप है शिव बाप, आत्माओं का बाप, और आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है प्रजापिता। क्या? राम बाप, जो कृष्ण को जन्म देता है, वो राम बाप वाली आत्मा और शिव बाप वाली आत्मा दोनों ही बिंदु बन करके पहली पहली बार उनका मिलन होता है 5 दिसंबर को। अव्यक्तवाणी बहुतों ने सुनी होगी। पांच तारीख दिसंबर को 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है, असली स्मृति दिवस वो है जब असली बाप दादा का मेल होता है। असली बाप दादा रामकृष्ण की आत्माएं नहीं है, असली बाप दादा शिव और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं है, असली बाप है आत्माओं का बाप शिव, और आत्माओं में बड़ा बच्चा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में बड़ा बच्चा राम बाप। दोनों आत्माएं समान स्टेज बनती है। शिव बाप तो सदा सर्वदा सदा शिव ज्योति बिंदु है ही, लेकिन आत्माओं के बीच में जो बड़ा भाई है राम बाप वाली आत्मा, वो पहले महादेह अभिमानी और वो अब आत्माभिमानी बनता है। कब? जब पहली बार आत्मज्ञान लेता है। बेसिक ज्ञान में आकर के आत्मा का परिचय मिलता है कि मैं आत्मा देह नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु शिव है। दोनों का मिलन तब होगा जब दोनों समान होंगे। क्या दुनिया में भी जब मेल मिलाप करते हैं, विवाह करते हैं, वि माने विशेष, वाह माने वाह वाह, कैसी वाह वाह, दो समान मिलकर के जब बनते हैं, मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है विवाह है। ऐसे ही शिव बाप ज्योति बिंदु और प्रजापिता देह अभिमान का सांढा बैल, वो बैल आत्मिक स्वरूप को समझता है, ज्ञान लेता है बेसिक में आकर, और वो भी मन रूपी घोड़े वाला है या नहीं है, और वो मन रूपी घोड़ा सभी घोड़ों से तीखा दौड़ने वाला है या कम दौड़ने वाला है, तीखा दौड़ने वाला है। तो वो मन रूपी घोड़ा को युक्ति बताई कि तुम भी अपन को आत्मा समझो ज्योति बिंदु, क्या देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को, देह के संपर्क में आने वालों को, सबको भूल जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ, किसको याद करो, आत्मा के बाप को याद करो। इस दौड़ में पीछे जावेंगे, फाउंडेशन पक्का पड़ेगा तो बिल्डिंग पक्की बनेगी। तो फाउंडेशन में ही वो आत्मा जो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, चार सब्जेक्ट में से याद का, वो फाउंडेशन में ही तीखा डाल देती है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, इस पुरुषार्थ में फाउंडेशन में ही तीखा जाने के कारण पहले पहले 6 दिन का कोर्स पूरा होते होते शरीर को भूलकर किस स्टेज में टिकती है, निराकारी आत्मिक स्टेज में टिकती है। और मिलन मिलाने के लिए कितना टाइम चाहिए है, 1 सेकंड छोड़ो, दुनिया में बड़ा बाप और बड़ी परिवार की पहली पहली बार मिलन मेला मनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेते हैं। अरे सबको याद तो होगा ना, हा? अरे कितना टाइम लेते हैं, कितनी देर टिकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट है, वो हद के निवाले और वो बेहद की इंद्रियों का निवाला, भूल जाते हैं 2-3 निवाले खाने में 2-3 मिनट। तो बताया 2-3 मिनट भी अगर वो ज्योति बिंदु की स्टेज बनी रहे, स्मृति की पक्की स्टेज जिसमें ज्योति बिंदु के अलावा कोई दूसरा संकल्प ना आने पाए, तो बाप का मिलन शिव का और बच्चे का मिलन मनुष्य आत्माओं के बीज का पक्का मिलन दुनिया के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ,
हुआ।
वो बाप हो गया, और वो परम ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा नामधारियों में कैसी अम्मा? परम ब्रह्मा, बड़ी ही अम्मा हो गई। इसलिए बोला है मुरली में, क्या बोला? कि ऊंचे ते ऊंचा बाप, आशिक होकर आता है। किसका आशिक होकर आता है? है एक माशूक का आशिक होकर आता है। कौन है वो एक माशूक? मनुष्य शक्ति का बीज वो माशूक है। और वो
माशूक है,
वो आशिक है और वो माशूक है। तो वो कहता है जिसको मुझे ऊंचे से ऊंची आत्मा ने माशूक बनाया, तो तुम सबको भी क्या बनाना पड़े? तुम सबका भी वो ही माशूक है। क्या? मैं माशूक नहीं हूँ, तुम सब आशुक हो और ये माशूक है। मेरा भी माशूक और तुम सबका भी माशूक। तो बताया, आशुक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तो तुम सब भी आशिक हो, किसके पीछे भाग भाग के जाते हो? माशूक के पीछे भाग भाग के जाते हो। दुनिया में भी जो आशिक होते हैं किसके पीछे भागते हैं? माशूका के पीछे भाग। यहाँ भी ऐसे ही। ये परंपरा किसने चलाई है? ये भी परंपरा की शुरुआत भगवान ने ही चलाई, जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। दुनिया के सभी मनुष्य मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते। तो बोला, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा बेहद का बाबा जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता, कृष्ण को ही भगवान समझ बैठे हैं, समझते हैं कृष्ण ही गीता का भगवान है। परंतु कृष्ण में आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। क्या? आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, इसलिए कृष्ण को आदिदेव नहीं कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे कृष्ण के लिए नहीं कहा जाता। धर्म पिताएं भी कृष्ण को आदम नहीं मानते। क्रिश्चियन से एडम मानते हैं। जैनी लोग भी कृष्ण को आदिनाथ नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है, बनाने वाला नहीं है। बनाने वाला कोई और है। तो जो बनाने वाला है, जरूर वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बनाने वाला रचयिता हुआ है या रचना है? रचयिता। रचयिता साकार या निराकार? साकार। तो जो साकार रचयिता है वो आदि को भी जानता, मध्य को भी जानता और अंत को भी जानता है। वो सबका आदि मध्यंत है, उसका आदि और अंत कोई जान ही नहीं सकता। हाँ इतना जरूर है कि कृष्ण का जो आगे का जन्म है सतयुग में, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम अभी मैंने ब्रह्मा रखा है। किसने है? शिव बाप ने नहीं, शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा है। इसलिए मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा का बाप कौन हुआ, प्रजापिता बोलते हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में उनमें प्रवेश करता हूँ। क्या बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, बहुत जन्म कितने नहीं 83 जन्म, 83 जन्म हुए बहुत जन्म, उसके भी अंत में 83वें जन्म में जब 60 साल का था वानप्रस्थ अवस्था, तो अंत का समय था है। और उसका भी अंत तब होता है जब ब्रह्मा नामधारी का 100 साल पूरा होता है 76 में। तो बोला बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। क्या किसमें? उनमें प्रवेश करता हूँ, ये नहीं कहा इनमें, इनमें माने इसमें, ये नहीं कहा, उनमें प्रवेश करता हूँ। उनमें माने एक में या दो में है? दोनों में, राम वाली आत्मा में भी और कृष्ण वाली आत्मा में भी। फिर मैं उनका नाम ब्रह्मा रख देता हूँ, क्योंकि मर्जीवा बनते हैं ना बच्चे, क्या सन्यासी लोग भी जब अपना कोई चेला बनाते हैं तो नाम बदलते हैं ना। कब नाम बदलते हैं? चेला जब लंगोटी धारण करता है गुरुजी की तरह तब नाम बदलते हैं, या साधारण रूप में कोई घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा रहता है धंधा दोरी करता है तब नाम बदलते हैं है? पूरा मर जीवा या जिंदा रहे लेकिन दुनियावी तरीके से मर जाए, मर जीवा बनते हैं। तो घरगत व्यवहार से संन्यास करते हैं, जाकर के निवृत्ति मार्ग में गुरु करते हैं। तो कहेंगे मर गया, कहां से मर गया, दुनिया से मर गया। तो उनका फिर नाम भी ऐसे ही रखा जाता है, क्या 76 से पहले कोई व्यक्ति का नाम ब्रह्मा कुमारियों ने शंकर नाम दिया, शंकर पार्टी नाम दिया है? कब दिया? 76 के बाद। तो इससे क्या साबित होता है कि मर्जीवा बना या नहीं बना है? दुनियादारी से मर्जीवा बना या नहीं बना? ऐसे ही ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जब दुकान वगैरह छोड़ करके भागीदारी आगीदारी सब छोड़ छाड़ करके सत्संग में लगा और सब कुछ कन्याओं माताओं को अर्पण कर दिया। तो मर्जीवा बना या नहीं बना? बना। तो 47 में क्या नाम प्रत्यक्ष हुआ है? जिस तन में भी प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रहते हैं। कैसे पता चले इस तन में प्रवेश किया? जब ज्ञान सुनाते हैं। ऐसा ज्ञान जो ज्ञान दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सुनाया, तो फिर उनका नाम ऐसे ही रखा जाता है। तो यहाँ भी तो नाम पहले पहले बच्चों का ऐसे रखा है ना सबका। अभी वो नाम नहीं रखते हैं। क्यों है? जब नाम रखा था तब प्रैक्टिकल जीवन में मर्जीवा बने थे, और अभी हाँ अभी फिर जिंदा हो गए दुनियादारी में। क्यों नहीं रखते हैं कि नाम रखता हूँ और फार गति देकर चले जाते हैं? क्या नाम किस आधार पर रखा जाता है? काम के आधार पर। मर्जीवा तो बने नहीं तो नाम भी कैंसिल। पीछे फार गति दे जाते हैं तो उससे क्या होगा? बाप के बने और फिर फार गति दे दी, ये तो ठीक नहीं है ना। मर्जीवा बने, बाबा का बने और भाग जावे, ये तो शोभता नहीं है। कितने कितनों के नाम रखे, नाम रख करके कितना रखूंगा। बहुतों के नाम रखे, बहुत भाग गए, इसलिए बंद कर दिया। इसलिए उनका नाम रखना बंद कर दिया। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। तुम्हारा माने तुम्हारा किसको कहा जाता है? हैं? वो रुद्रमाला के मन के जिनके सन्मुख बाप प्रैक्टिकल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं तुम बच्चे या तुम्हारा। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए, माने तुम जो रुद्रमाला के मणके हो तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। क्या नाम पढ़ना चाहिए है? अरे एडवांस के आदमी चार कुमार निकले। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो चार मानस पुत्र पैदा किए। नाम रखा गया क्या? सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। जो जो ब्रह्मा का बड़ा बच्चा है वो बड़ा बच्चा क्या नाम? सनत कुमार, जिससे सनातन धर्म चला। इसलिए वो सनत कुमार योगियों का ईश्वर कहा जाता है। योगी ईश्वर है, ज्ञानेश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर। इधर भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी कहते हैं, शंकर को भी कहते हैं योगेश्वर, कृष्ण को भी कहते हैं योगी राज। तो क्या तीन तीन ईश्वर होंगे? वर माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ईश्वर माने शासन करता, ईश्वर माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता एक ही होगा या अनेक होंगे? तो बताओ ये तीन नाम क्यों? क्योंकि वो तीनों ही जो नाम हैं एक के ही हैं। क्या? जो सनत कुमार है वही शंकर है, वही सनातन धर्म का आदि स्थापक है। जो सनत कुमार है वही संगम युग में संगम युगी कृष्ण है। तो तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। तो रुद्रमाला में नाम पढ़े या नहीं पढ़े? रामायण में उनका नाम रख दिया है दशरथ के चार पुत्र हुए। झाड़ के चित्र में नीचे दशरथ बैठे हुए दिखाए गए, चार दाई ओर की छोटी जड़ों में, चार बाई ओर की छोटी जड़ों में, और जो मुख्य जड़ है उसके नीचे दो। कितने रथ हुए है? दस रथ। ये दसों रथ वाली आत्माएं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाती हैं। उसके बाद राम वाली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है। तो दशरथ का पुत्र हुआ या नहीं हुआ?
हुआ।
तो शास्त्रों में नाम दे दिया दशरथ का पुत्र राम। अकेला राम की चार, चार भाई। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले पहले तुम मरजीवा बने ना है। ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म तो लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, परंतु उन ब्रह्मा कुमार कुमारी संप्रदाय के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में तुम को अलग थलग कर दिया गया या नहीं कर दिया गया है? तो मरजीवा बने या नहीं? दुनिया से, ब्राह्मणों की दुनिया से मर गए या जिंदा रहे? आप मुए मर गए दुनिया। हाँ, मरजीवा तो बने हो, परंतु परंतु लगा दिया, परंतु यहाँ मरजीवा बन करके, यहाँ माने कहाँ है? संगम में। यहाँ मरजीवा बन करके आज बाबा का बन जाते हैं और कल फिर फारकति दे देते हैं, विरोधी बन जाते हैं फारकति देकर। तो वो तो कितना नाम मुफ्त में, मेहनत में ही मुफ्त में नाम बदनाम करते हैं। तो इसलिए अब नाम नहीं रखते हैं। क्या? नाम रखना बंद कर दिया। पहले नाम पड़ गए, क्या? कोई का नाम राम, कोई का नाम भरत, कोई का नाम लक्ष्मण, कोई का नाम शत्रुघ्न। राम की राजगद्दी चित्रों में दिखाई जाती है ना? नहीं दिखाई जाती? दिखाई जाती है। जो फारकती दे गए वो फिर दास दासी बनते हैं। राजगद्दी में क्या दिखाया? राम राजगद्दी पर बैठा है, है? और लक्ष्मण छाता लिए खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? है? छत्र छाया लिए खड़े। तो दास दासी हुए ना? है? और शत्रुघ्न पांव धो रहे हैं। तो दास दासी हुए ना? है? और भरत क्या कर रहे हैं? चावल ढुलाए रहे हैं, पंखा। तो दास दासी हुए ना? तो खराब काम किया होगा है? बाप का बने और बन करके क्या किया? फारकति दे दी। तो नीचे पद पाएंगे, राजधानी में तो आएंगे, क्या? सूर्यवंशी राजधानी में तो आएंगे, लेकिन नीचे पद पाएंगे या ऊंचा पद पाएंगे? नीच पद पाए लेते। और यहाँ संगम युग में नीच पद पाते हैं तो ब्रॉड ड्रामा में ऊंचे पद पाएंगे क्या? नहीं। भावी त्रेता की अंतिम जन्म की जो गद्दियां हैं, स्वर्ग को नष्ट करने वाली गद्दियां, जो सबसे छोटा भाई है शत्रुघ्न, वो क्या करता है? उसके अंदर आग लगी रहती है। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, और ऐसा उपक्रम करता है कि भगवान का बना बनाया घर ग्रस्त आश्रम जो मिनिमम तैयार होता है पहला पहला उसको ध्वस्त कर देता है। तो भक्ति मार्ग में जितने भी क्रिश्चियंस के पूजा स्थल बनते हैं उनका नाम क्या रखा जाता?
गिरजाघर।
कैसा घर? गिरजा। स्वर्ग में नाम निशान खत्म कि कोई गिरजाघर रहेगा नहीं रहेगा। तो वो तो कितना नाम मुफ्त में, मेहनत ही मुफ्त में चली जाती है। क्या जो राम को सहयोग दिया शुरुआत में दिल्ली वालों ने, वो सारी मेहनत बेकार चली गई। परंतु फिर भी बाबा कहते जो फसल पहले पहले बोई जाती है वो फल ज्यादा देती है। क्या टाइम पर बीज बोया ना, दूसरों ने तो नहीं बोया, दूसरों ने सहयोग दिया क्या? दूसरों ने सहयोग नहीं दिया और उन्होंने सहयोग दिया तो अंत तक भगवान बाप उन बच्चों को सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। किनको? उन्हीं दहली के बच्चों को। कौन? जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या सनातन सनंदन के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं उनको अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखो सहयोग तो अंत तक मिलता है, लेना चाहे ले, विरोध करना चाहे तो विरोध करें। तो अंत में जाकर के आंख खुलती है। क्या जो एटम बम बनाने वाले क्रिश्चियंस हैं, यादव हैं, इस्लामी बौद्धी चीन वगैरह, ये जो एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं वो अंत में जब दुनिया में बहुत पावरफुल बन जाते हैं और ये समझते हैं कि हमको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन
जब चक्र कभी चीज देके बादल
सर के ऊपर मंडराते हैं तो सबकी हवा निकल जाती है। बड़े से बड़े नास्तिक जो एटम बम बनाने वाले रशियन से हैं वो भी हथियार डाल देते हैं भगवान के सामने और भगवान के प्रैक्टिकल रूप को पहचान लेते हैं और मंत्र को प्रैक्टिकल में लाते हैं। कौन सा मंत्र? मत मना बाबा, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? कौन बोला? आत्माओं का बाप नहीं बोला मेरे, उसको तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है कि बेचैन रहता है? शिव सदा अमन चैन में, बेचैन कौन बनता है? मनुष्य बनते, मनुष्य सृष्टि का बाप बेचैन भी बनता है। तो जब बेचैन बनता है सारी दुनिया एक तरफ हो जाती और वो आत्मा एक तरफ रह जाती। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर 42-45 के बीच हुआ था, राम वाली आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो गई। उसके बाद वो पहली बारी सृष्टि जो रची गई ब्रह्मा ने बिगाड़ दी, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची, तीनों बार बिगड़ दी, फिर दूसरी बार 47 में रची। ओम मंडली वाली ब्राह्मणों की सृष्टि बिगड़ गई और ब्रह्मा कुमारी नाम की दूसरी सृष्टि ब्राह्मणों की आरंभ हुई और संक्षेत्र तक घोषणा दी उसके बने रहने की। बाद में घोषणा कर दी गई थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, तो ऐसे ही हुआ। 76 से एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया शुरू हुई और ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया विघटन होने लगी। कौन बचा है? अरे एक युगल बचा, प्रत्यक्षता रूपी जिसका जन्म हुआ, बाप का प्रत्यक्षता बस, बाकी तो किसी का प्रत्यक्षता नहीं हुई। टू लेट का बोर्ड लग गया, लगा या नहीं लगा? हैं? लगा, बोला कि जो दिल्ली में पहला मेला हुआ ब्राह्मणों का बेसिक में, उसका रिजल्ट बताया कि इस स्थूल प्रदर्शनी का इनाम दीदी दादियां देंगी, अव्यक्तवाणी में बोला, और चैतन्य प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा देंगे। तीन नाम घोषित होंगे। क्या? तीन नाम घोषित होंगे, तीन को मिलेगा क्या इनाम? कौन कौन सा? हाँ, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा कौन, बाप कौन और ब्राह्मण बच्चे कौन? उन ब्राह्मण बच्चों में मुखिया कौन है? राम बाप। और ब्रह्मा कौन? अरे प्रजापिता ब्रह्मा और मनुष्य सृष्टि का बाप वो तो एक ही हो गई है। हाँ, जो पद पाता है ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो अब्बल नंबर का परम ब्रह्म और उसका अब्बल नंबर का साथी ब्रह्म, ये दो ब्रह्मा हो गए। और तीसरे नंबर का वो ब्रह्मा जिस ब्रह्मा के द्वारा ये ब्राह्मण सृष्टि बैठी हुई है, नहीं जगदम्बा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा है, तो तीन को इनाम मिल गया, तीन प्रत्यक्ष हो गए। जो मुरली में बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र असली नहीं है, डुप्लीकेट है, तुम बच्चों को असली चित्र बनाना चाहिए। क्या मतलब? हाँ, जो पुराना चित्र है त्रिमूर्ति का साक्षात्कार से बनाया हुआ, उसमें तीनों चेहरे ब्रह्मा के रखे हुए हैं, ध्यान से देखो। लेकिन ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, जो शरीर छोड़ दिया उसकी मूर्तियां संसार में कैसे बनेंगी? झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व पर ये तीन रंग का झंडा विजय दिलाता है। तो क्या कपड़े का झंडा विजय दिलाता है? है? ये शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं, ब्रह्मा रूपी जगदम्बा जिसकी पूजा होती है। दादा लेखराज ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, और विष्णु की पूजा होती है और शंकर महादेव की पूजा होती है। तो ये तीनों चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, हो जाते हैं मुरली के आधार पर और अव्यक्त वाणी के आधार पर और उनके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर आधारित। तो बोला अभी नाम रखना बंद कर दिया क्योंकि बागंदी हो जाते हैं। क्या तुम्हारी जो अम्मा है बड़ी अम्मा जगत जगत अम्मा उसी का पता नहीं कहाँ चली गई, कहते हैं घूंघट में है, जब टाइम आएगा तो घूंघट निकाल के बाहर आ जाएगी। हैं? कहाँ है अभी? घूंघट में चली गई। अरे देवी देवता सनातन धर्म की देवियां द्वापर युग से कौन से धर्म में चली जाती है? हैं? अरे नहीं मालूम, इस्लाम धर्म में चली जाती, मुस्लिम धर्म में, तो क्या डाल लेती है? हैं? बुरका डाल लेती है। डालती है कि नहीं? डालती है। महाकाली का रूप कैसा होता है? काला होता है। तो वो महाकाली का रूप में क्या करती है? घूंघट डाल लेती है। अभी वो महाकालियां प्रत्यक्ष होने वाली है, तो तुम्हारा नाम अभी डालना बंद कर दिया। तुम्हारी अम्मा ने ही जब ऐसा कर लिया तो तुम्हारा नाम क्यों डाले? हैं? नहीं डालेंगे। हाँ अभी ब्राह्मण जरूर बनना है। क्या? भले ब्राह्मणों की तीन सृष्टियां रची गई, तीन बार ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, तीनों बार पसंद नहीं आई और ध्वस्त कर दी। अभी तीसरी बार सन 76 में बने और तीसरी बार भी अब क्या होने वाला है? हैं? ध्वस्त होने वाली है। अभी तेजी से नई नई पार्टियां बन रही हैं, विरोधी बन जाते हैं वो पार्टियों में जाते हैं या सहयोगी बनने वाले? तो अभी ब्राह्मण बनना जरूर है, तुम शूद्र नहीं हो। क्या तुम जो सन्मुख बैठे हो वो शूद्र नहीं हो? तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे हो। क्या? किसके पोत्रे? शिव बाबा के पोत्रे। जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, इस दुनिया में कोई चीज सदा कायम नहीं, सदा कायम सिर्फ है एक ही शिव बाबा है। वो शिव बाबा के तुम पोत्रे हो। क्या तुमको दादा लेखराज ब्रह्मा का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप ने कहा है वर्षा मेरे से लेना है। किसने कहा? बाप ने कहा। तो याद भी तो मेरे को करना है ना, है? मेरे से वर्षा लेना है। किससे वर्षा लेना? मेरे मेरे किसने कहा? शिव बाप ने नहीं कहा? है? शिव बाप ने कहा? शिव बाबा ने कहा? अरे किसने कहा? शिव बाबा ने कहा वर्षा मेरे से लेना है। तो याद भी मेरे को करना है कि निराकार बिंदी को याद करना है? निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? हैं? निराकारी बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलेगा या साकारी स्वर्ग का वर्षा मिलेगा है? निराकारी बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलेगा, ज्ञान का वर्षा मिल गया। बाप कहते हैं मेरे पास जो भी ज्ञान था सारा दे दिया, अब जाओ घर। मिल गया, संतुष्ट हो गए?
नहीं
हुए। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हे बाबा आओ ज्ञान सुना के चले जाओ, ऐसे कहते हैं क्या? किस लिए बुलाते हैं? हे पतित पावन आओ, हम पतितों को संग के रंग से पावन बनाओ, और पावन बन जाए हम तब भले चले जाओ। क्यों? क्योंकि हम जब सब पावन बनेंगे 4.5 लाख, तो हमारे संगठित वाइब्रेशन से ये 5 जड़ तत्व भी पावन बनेंगे। पहले जड़ तत्व शरीर के 5 तत्व पावन बनेंगे या पहले आत्मा पावन बनेगी? क्यों? क्योंकि आत्मा चैतन्य है और जड़ शरीर 5 तत्व जड़ हैं। जड़ ज्ञान नहीं लेंगे क्या? जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो पशु पक्षी प्यार की भाषा जानते हैं या ज्ञान की भाषा जानते हैं? जो पशु पक्षी हैं जिनमें बुद्धि नहीं है वो भी प्यार जानते हैं, प्यार करने वाले को पहचान लेते हैं। इसलिए गायन है ऋषियों महर्षियों के आश्रम में गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। अभी ऐसी सृष्टि नहीं है, अभी मनुष्य के अंदर जानवरों के लिए विद्वेष भरा हुआ है। क्या? मनुष्यों में जो वाइब्रेशन बनाने वाले ज्यादातर मनुष्य हैं, वो जानवरों को मार के खा जाने वाले हैं या जानवरों से प्यार करने वाले हैं? तो दुश्मन हुए ना, तो दुश्मनी का वातावरण जानवरों में फैला हुआ है। हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? हैं? प्यार की भाषा सीखनी है और उस प्यार के वाइब्रेशन से जिसे याद कहा जाता है। एक रावण की भी याद होती है, हैं? रावण भी याद करता है कि नहीं? रावण भी याद करता है। तो रावण की याद में ज्यादा पावर है या सीता की याद में ज्यादा पावर है? दुश्मनी की याद कौन सी है और प्यार की याद कौन सी है? सीता की याद प्यार की याद है। तो जो प्यार की भाषा है, उस प्यार की भाषा याद के वाइब्रेशन से जिस समय ये सारी विधर्मियों की दुनिया नष्ट हो जाएगी। मैं किस लिए आया हूँ? विनाशाय च दुष्कृताम, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका नाश करने के लिए आया हूँ। विधर्मियों का, विदेशियों का नाश कर दूंगा और स्वधर्मियों का पालन करूंगा। तो जब इस दुनिया से चतुर्थ विश्व युद्ध में सारे विधर्मी देह अभिमान में रहने वाले विपरीत धर्म वाले हुए ना, कि आत्मा अभिमानी है, वो नष्ट हो जाएंगे, एटमिक विस्फोट में सब खलास हो जाएंगे।
और तुम ऐसी याद में टिक जाएंगे जो अभी भी कभी कभी अनुभव करते होगे, जब गहरी याद आती है तो श्वास प्रश्वास धीमी हो जाती है, क्या भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, क्या? और जब भूख प्यास कम होगी तो टट्टी पेशाब भी कम लगेगी। श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाएगी, इतनी धीमी हो जाएगी कि इंद्रियों से किसी भी प्रकार का रस लेने की तुम्हें इच्छा नहीं रहेगी, इंद्रियों के भोजन की ही इच्छा नहीं रहेगी। जो इंद्रियों की अभी भूख लगती है ना, भूख लगती है कि नहीं? सभी इंद्रियों की भूख लगती है या कोई इंद्रियों की लगती है, कोई की नहीं लगती है? हैं? अरे सभी इंद्रियों की लगती है या नहीं लगती है? नहीं लगती है। चांदाराम बाबा नहीं बोल रहे हैं? अरे लगती है कि नहीं लगती? लगती है। तो वो सब योगियों की नींद कम हो जाएगी, निद्राजीत बन जावेंगे, आंखों को नींद की जरूरत नहीं रहेगी। नींद में आराम किया जाता है, आराम थकान के बाद होता है या बिना थकान के आराम चाहिए? इंद्रियां थक जाती हैं तो आराम चाहती है। तो देखो सब प्रकार की इंद्रियों की भूख खत्म होती जाएगी तो श्वास प्रश्वास की भी जरूरत नहीं रहेगी। दुनिया में एटम बम फटेंगे, उनसे जो वायुमंडल है वो गंदा फैलेगा, हवा कैसी हो जाएगी? विषैली हो जाएगी, और तुम तो हवा लेंगे ही नहीं। हवा की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं। भोगियों को ज्यादा भूख लगती है या योगियों को ज्यादा भूख लगती है? निजाम बादशाह को कितनी रानियां थी, तो ज्यादा भूख लगती होगी हैं? तो देखो इंद्रियां तो होंगी लेकिन हम अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले बनेंगे, इंद्रियों की भूख खत्म हो जाएगी। कब? जिस समय दुनिया में एटमिक विस्फोट होंगे, चतुर्थ विश्वयुद्ध, 5-7 रोज के अंदर सारी 500-700 करोड़ दुनिया खलास, भोगी खलास, इंद्रियों का भोग लेने वाले खलास, और योगी रहेंगे। उन योगियों के ब्राह्मणों के वातावरण से जो दुनिया होगी और दुनिया के 5 तत्व होंगे जो बड़े तमो प्रधान बन चुके होंगे, एटम बम फटेंगे तो आग ही आग दुनिया में बरसेगी। समंदर का पानी खौलने लगेगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी में आकर महासागर में, प्रशांत महासागर में जुड़ेगा तो प्रशांत महासागर का जल ऊंचा उड़ जाएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं वो सारे पहाड़ टूटेंगे, दरका खाएंगे, पिघल करके समंदर में आ जाएंगे, तो समंदर का पानी और ऊंचा जाएगा तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। जलमयी में जल क्या करेगा, तामसी रूप धारण किया या सात्विक रूप धारण किया? तामसी बन गया जल, हवा भी तूफान लाएगी बड़े बड़े। तो देखो पांचों तत्व बहुत तमो प्रधान बन जाते। पांचों तत्वों का जो मुखिया तत्व है पृथ्वी, पृथ्व्यात माने चौड़ी होती जाती है, उसे कहते हैं पृथ्वी माता। पहले कन्या थी भारत माता, कन्या का रूप था, फिर विधर्मी धर्म पिताओं के आने से उन्होंने विकारी बनाना शुरू किया कमर की इंद्रियों से, तो माता चौड़ी होने लगी। विधर्म विपरीत धर्म, कैसे धर्मखंड बन गए है? हाँ, विनाशी धर्मखंड बन गए। आज से 2500 साल पहले, उससे पहले थे ही नहीं, समंदर में समाये हुए थे। बाद में ये धर्मखंड ऊपर आए, कैसे 300 साल पहले किसी को पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया क्या होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही अमेरिका 500 साल पहले किसी को पता ही नहीं था क्या अमेरिका नाम का भी बड़ा कोई भूखंड है दुनिया में। क्यों पता नहीं था? क्योंकि समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। इसी तरह ये सारे महाद्वीप, पहले अकेला भारत खंड था, ये दूसरे दूसरे धर्मखंड बाद में आए हैं। पहले नहीं थे और अंत में भी नहीं, विनाशी धर्मखंड हैं, न थे न रहेंगे। अविनाशी धर्मखंड भारत है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञान का भंडार, भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, लगा रहता है। दुनिया ज्ञान की ओर जाती है। विनाशी धर्मखंड देह का मनन चिंतन मंथन करती है, पंचभूतों का मनन चिंतन मंथन करते हैं, भौतिकवाद में जाते हैं। और भारत, भारत
भौतिकवादी नहीं है, ये तो विदेशियों के प्रभाव से भौतिकवादी बन गया। अभी तो भगवान बाप आया, क्या बनाने, अध्यात्मवादी बनाने आया। अधिमानी अंदर, आत्मा माने आत्मा, कहाँ था? अधिमानी अंदर, आत्मा के अंदर क्या क्या है? 84 जन्मों की क्या कहानी बनी हुई है, ये बताने आया है। तो अध्यात्मवादी भारत बन जाता है। क्या होता है, जितने भी भौतिकवादी देश हैं वो सब फलासुर है, सब समंदर में समा गए। तब तक के लिए 2500 साल के लिए समा गए, न थे न रहेंगे। तुमको याद किसको करना है?
बाप
को याद करना है,
बाबा नहीं, बेहद का बाबा,
बेहद का बाबा,
हमारा बाबा,
हाँ, हमारा बाबा साकार निराकार का बेल बाबा, उस बाबा को पहचान करके, जान करके, मान करके और दूसरों को सब परिचय दे करके खुद भी प्रैक्टिकल में उसके आदर पर चलना है और दूसरों को भी चलाना है। तब हम शिव बाबा के पुत्र हैं पक्के पक्के। पुत्रों को डाले का वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। देखे जो दुख दर्द है, बीमारियां हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। देह छूटने के बाद नहीं, देह रहते रहते और जीवन में रहते रहते जीवन मुक्ति मिलेगी और दुख दर्दों से मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति भी मिले और जीवन मुक्ति भी मिले। मुक्ति का मतलब है जब चाहे तब हम उस देह को मोटा पड़ा रहने दें और उन वैज्ञानिकों में जिन्होंने एटम बम्ब बना के रखे हैं, जो अभी हिम्मत नहीं कर पाते हैं बरसों से अपनी बनाई हुई रचना को विस्फोट करने के लिए, उनके अंदर प्रवेश करके उनको हिम्मत देंगे और उनकी बनी या बनाई हुई चीज से इस दुनिया का विनाश कराने के लिए उनको निमित्त बनाएंगे। हम निमित्त नहीं बनेंगे, वो निमित्त बनेंगे। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ क्या? हम रुद्र के बच्चे हैं। रुद्र राव ने क्या किया, क्या किया? रुद्र यज्ञ युद्धांत कर दिया। यज्ञ कुंड में सारी दुनिया की आहुति पड़ रही है। तो मेरे से पता लेना है तो याद भी मेरे को करना। मैं कहता हूँ मुझे याद करते रहो, इनको नहीं, इनको माने एक या दो
है? हाँ, इनको माने राम कृष्ण को नहीं। ये दोनों अभी पुरुषार्थी हैं। इसको याद करो, क्योंकि ये भी तो तुमको बताया है कि बहुत जन्म के अंत के भी अंत के जन्म में ये पतित, ये तो तुमको समझाया ना, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में यह पतित हैं। कौन? राम और अभी भी क्या है, अभी भी पतित हैं। शंकर पतित है या पावन है? हैं? अभी भी पतित है। और शंकर की सवारी बैल पतित है या पावन है? वो भी पतित है। तो कब पावन बनेंगे? बैल है मन और शंकर है त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र बुद्धि। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप, उसका बड़ा बच्चा शंकर। शंकर पुरुषार्थी क्या है? ये अभी पतित हैं दोनों। कौन? राम और कृष्ण। ये बात तो तुम बच्चों में कोई भी समझ सकते हैं। बाप कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं उसमें प्रवेश करता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के भी अंत के जन्म में यानी वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करता हूँ। तो बहुत ही जन्म का, क्योंकि इस समय सभी पतित हैं, तो क्लियर बताया ना बाप ने। अच्छा अभी वो तो पतित नहीं है क्या? अभी वो तो पतित नहीं है, सूक्ष्म बतन में जो वो दिखलाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सूक्ष्म बतनवासी देवताएं पतित हैं या पावन हैं? सूक्ष्म बतनवासी तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहने वाले हैं ना, है? वो जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहने वाली आत्माएं हैं, जिनको पतित बनने वाला शरीर है ही नहीं, तो वो पावन हैं या पतित हैं? अभी उनको प्रजापिता कहेंगे क्यों? प्रजापिता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो पिता कैसा, 500-700 करोड़ प्रजा का पिता, वो पिता कैसा जो परिवार के बच्चों को जलती हुई अग्नि में छोड़ के खुद भाग जाए? अभी क्या होने वाला है, सारी दुनिया में आग लगने वाली है। तो वो बाप सच्चा बाप है या झूठा बाप है? हैं? सच्चा बाप है। तो जो सच्चा बाप है वो कोई भी बच्चे को घर परिवार के अंदर आग में जलते हुए छोड़ नहीं सकता, प्रत्येक बच्चे को वापस घर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? घर माने परमधाम, और परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, ज्यादा दूर ले जाने की बात नहीं। क्या तो इस सृष्टि पर तुम बच्चे परमधाम को उतार लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? हैं? इस सृष्टि पर कहाँ उतार लेंगे? माउंट आबू में उतार लेंगे। माउंट आबू तो छोटा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ तो उससे भी बड़ा है, बाकी क्यों नहीं उतार लेंगे? हैं? नहीं, माउंट आबू से ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़, उससे भी ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट चोटी है। अरे वो तो हद की चोटी है, वेद की चोटी तो तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो ब्राह्मण चोटी। क्या जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तो चोटी पकड़ के खींचता हूँ? क्या वो चोटी जो ज्ञान की चोटी है, वो ज्ञान की चोटी में बाप के साथ जब गांठ जुड़ती है, माता पिता की गांठ जुड़ती है ना, गांठ जुड़ती है तो कैसा शेप हो जाता है? शिवलिंग बन जाता है। जो 5 दिसंबर को बताया पहला मिलन मेला हुआ स्मृति दिवस है, पांच का 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है असली आने वाला कि जाने वाला। हाँ जी, तो वो चोटी पकड़ करके उठा लेता है, ऊपर उठाता है या दाएं बाएं या आगे पीछे या नीचे की ओर, ऊपर उद्धार, उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाता है। तुम नीचे जाते हो दलदल में, निकलना नहीं चाहते हैं, 80 साल हो गए, ऐसा मत करो हैं, फिर भी नहीं मानते, हताश हो जाते, मुझे निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, आप इस तरह से करो, रोते हो चिल्लाते हो। तो क्या करता हूँ, तुम ब्राह्मणों में जो चोटी का पुरुषार्थ का पुरुषार्थी है उसको पकड़ लेता हूँ, और उसको पकड़ करके अपनी बुद्धि रूपी मुट्ठी में जकड़ लेता हूँ। तो मिलन मेला हुआ या नहीं हुआ, हैं? मिलन मेला हुआ। जब ऐसी गांठ जुड़ती है तो शिवलिंग बन जाता है, शिवलिंग बन जाता है ना, वो जो शिवलिंग बना, संपन्न रूप बना, पुरुषार्थ करते करते वो संपन्न रूप है, उसको क्या कहेंगे, है सूक्ष्म वतनवासी, सदा काल का सूक्ष्म वतनवासी। वहां तो प्रजापिता नहीं हो सकता है, क्या कहां जाके बैठ जाता है, सूक्ष्म वतन में, कौन से सूक्ष्म वतन में, 3 पुरियां, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, कौन सी पुरी में जाके बैठता है, शंकरपुरी, ब्रह्मापुरी फिर भी साकार दुनिया के नजदीक, विष्णुपुरी बीच में, शंकरपुरी एकदम निराकारी दुनिया के पास, निराकारी धाम के नजदीक है ना, तो वहां जाके बैठ जाता। जाड़ के चित्र में कहीं दिखाया है, जाड़ के चित्र में ऊपर नग्न रूप में दिखाया है, सभी आत्माएं अपना शरीर रूपी चोला छोड़ करके जा रही है, कहां से होकर जा रही है, हर ऊपर को हरण करके ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, हरण करके। जो प्यार से याद करते हैं उनके हरण करने की तो बात ही नहीं, लेकिन जिनमें देहभान रह जाता है, आत्मा नहीं बन पाते, तो उनको जबरन हरण करता है और खींच के अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उस आकर्षित करने वाले का नाम है कृष्ण, कृष्ण माने आकर्षित करने वाला, कहाँ ले जाता है, मन मना भव, मेरे मन में समा, तेरे मन में क्या है, बिंदु, क्या है, बिंदु, तो कहाँ समा जा, जहाँ मैं समाया हुआ हूँ वहीं तुम 500-700 करोड़ समा जाओ। तो यही बात शंकराचार्य ने कही थी कि हम सब आत्माएं सागर के बलबूले हैं छोटे बड़े बलबूले सब अंत में सागर में समा जाते हैं और सागर में से ही निकलते हैं फिर सागर में। तो हम सब आत्माएं कल्प के अंत में उस अव्यक्त मूर्ति ना जो गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्ति में समा जाती है। अव्यक्त इसलिए कि वो लिंग को हाथ पांव नाक कान नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है, मूर्ति तो है अमूर्त नहीं है, मूर्ति है बड़ा रूप है अमूर्त नहीं है, लिंग तो अमूर्त मूर्ति है लेकिन उसमें अमूर्त भी है। बिंदु क्या जो बिंदु है वो किस आत्मा की यादगार है? शिव की यादगार। वो तो कहता है ना मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ, वो कहाँ से आ गया है? इसकी यादगार है हाँ, वो ही पुरुषार्थी सर्वोपरि पुरुषार्थी की यादगार है जो बिंदु बन जाता है, निराकारी स्टेज धारण कर देता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। ऐसा निराकारी कि 24 घंटे भी स्त्री संग में रहने के बावजूद भी स्त्री चोले के अंग में रहने के बावजूद भी इंद्रियों की स्मृति से परे रहता है, निराकारी इस तेज में रहता है, इसलिए उसकी यादगार इतनी भारी बनी हुई है। अव्यक्त मूर्तिना उस बीज में सारी दुनिया समा जाती है, उसी बीज में से सारी दुनिया निकलती भी है। जड़ और जंगम, चैतन्य और जड़ जो भी है सब उसी में समा जाएंगे, एक में समा जाएंगे और एक से ही बाहर निकलेंगे। इसलिए मुरली में कहते हैं मेरे को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे तीन तीन को याद करें कि एक को याद करें? क्या मतलब? जो एक बाप है अव्यक्त मूर्ति संपन्न शिवलिंग रूप वो हमारा घर भी है, सभी आत्माओं का घर है, हमारा घर भी है और वो हमारा स्वर्ग भी है। बाप मिला सब कुछ मिला, जिनको बाप मिल गया उनको जीवन में कोई तकलीफ अनुभव नहीं हो सकती, वो सदा सुखधाम में अपने को महसूस करेंगे, उनके लिए विनाश नहीं है, विनाश तुम बच्चों के लिए नहीं होता है, विनाश किन के लिए होता है? विनाशाय च दुष्कृताम, जो पापी है आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, परमपिता को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, अपने को ही सब कुछ मानते हैं, उनका विनाश करता हूँ। ओम शांति।